बृहद भागवत के माध्यम से हम सबको सत्संग प्राप्त हो रहा है। कल हमने इस पर विस्तार रूप से चर्चा की थी, यह ग्रंथ क्या है और अनुबंध चतुष्टय क्या है, ग्रंथ की प्रामाणिकता में क्या आशय है और इसमें कौन सी वस्तु प्रतिपादित की गई है और इसका अध्ययन अध्यापना से हमें कौन सा श्रेय प्राप्त होने वाला है और इसके पात्र परिचय आदि के रूप में जैमिनी, पूर्व मीमांसक और जनमेजय, परीक्षित के उत्तराधिकारी, ज्येष्ठ पुत्र और श्रोता के रूप में एक अति करुणा से भरी हुई मां उत्तरा और सद्य मरणासन्न महाराज परीक्षित, इस प्रसंग के विचित्र श्रोता है और विचित्र वक्ता है। मां श्रोता है, कल हमने कहा था विवाह के 2-3 मास के उपरांत उसके पति चले गए थे। जीवन भर जब परीक्षित महाराज जी का महाप्रयाण का समय आया था तो शास्त्र प्रमाणित करते हैं कि उनकी अवस्था प्राय 60 वर्ष की हुई थी, अर्थात पूरा जीवन काल उत्तरा को वैधव्य कष्ट उठाना पड़ा। पूरा जीवन काल एक नारी के लिए सर्वोच्च कष्ट माना जाता है। और तो और अभी पुत्र ही जाने वाला है अपने नेत्रों के समक्ष, पति भी गया पुत्र जा रहा है, बड़ी दुखद स्थिति है। शास्त्र करुणा से भरा हुआ है, तरह तरह के रस हैं, परंतु भक्तों के जीवन चरित्र का अनुशीलन किया जाए आप देखेंगे भक्त कभी दुख से पीछे नहीं हटता। उस दुख में, उस तरंगायित जीवन में उसकी जीवन नैया कृष्ण की ओर बढ़ती चली जाती है, कभी पीछे नहीं हटता। तो इसके मुख्य श्रोता जो है मां उत्तरा, परीक्षित महाराज जाने वाले हैं। मां विह्वला होकर के पूछती है, बेटा आपके गुरु महाराज परम विरक्त चूड़ामणि हंसाचार्यों के मुकुट मणि सुखदेव महाराज जी ने जो आपको उपदेश दिया है उसका सार संग्रह हमें बताओ, ना तो हमारे पास बहुत समय है ना तो आपके पास बहुत समय है, ब्राह्मण बालक के वचन अब सत्य होने वाले हैं। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमयानि दंक्षतु स्म कुलांगारं सुनितो मे तद्रुहं। अब तक्षक आएगा, कैसे भी आएगा बेटा, शीघ्रातिशीघ्र हमें सार निष्कर्ष बताओ। तो परीक्षित जी महाराज जी को जो भी अनुभूतियां हुई थी श्री सनातन गोस्वामी पाद ने ग्रंथ के मंगलाचरण में इसका स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा चैतन्य की कृपा से हम इसका अनुभव हुआ है। चैतन्य शब्द का अर्थ हमने कल किया था चित्त अधिष्ठाता देव चैतन्य, तो उसका वास्तुतस्तु अर्थ है श्री वासुदेव। श्री चैतन्य महाप्रभु का जो नाम है वो भी सत्य नाम है, परंतु चैतन्य का जो वास्तविक अर्थ है वो है भगवान वासुदेव। श्री सनातन गोस्वामी जी का यही कथन है कि चैतन्य महाप्रभु यति वेशधारी उनकी कृपा से अथवा वासुदेव श्री कृष्ण के ध्यान करने से हमें तत्वों की अनुभूति हो गई और उस अनुभूति सिद्ध बातों को हम आपके समक्ष रखते हैं जिनका नाम है बृहद भागवतामृतम। इस शंका का भी कल निराकरण किया गया था। भागवतकार बड़े बड़े धुरंधर मनीषी लोग यदि प्रश्न करेंगे, निगम कल्प तरूर गलितम फलम भागवत तो साक्षात रस रूप है, फल रूप है, फिर आपने उसमें से क्या निकाला, अपने भागवत अमृत कर दिया। जो साक्षात रस रूप है, फल रूप है, फिर फल से और क्या निकाला जाएगा। चलो मान भी लेते कि उसमें गुठली है और छिलके हैं, परंतु शास्त्रकारों ने कहा ना तो उसमें छिलके हैं ना तो उसमें गुठली है, फिर आपने क्या निकाला। तो समाधान दिया गया है, नहीं, भागवत में निकालने वाली कुछ भी चीज नहीं है, वर्ज्य वस्तु कुछ भी नहीं है, परंतु तारतम्य है रसों में। रस पंचविधा कल कहा गया था, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और आदिरस, श्रृंगार, जिनका अन्य नाम है माधुर्य। कबीर गोस्वामी कहते हैं यद्यपि इन रस ये अपने आप में श्रेष्ठ है, परम उत्कृष्ट है, परमानंद देने वाले है, रस रस्यते इति रसम, रसयते रस्यते, जो आनंद दे, जो जो आस्वादन करने योग्य है, उसी का नाम है रस। सूखी लकड़ी को, सूखा काष्ठ को कोई आस्वादन नहीं करता, उसमें रस नहीं है। इसलिए वेद की ऋचाएं वो सूखी लकड़ी के समान है, शुष्क काष्ठ है, परंतु भागवत एक रसाल फल है, उसमें रस है, वो आस्वादन करने योग्य है। इसलिए रस पे जो आस्वादनीय है, जो आस्वादन दे सकता है, जिसमें कुछ ना कुछ स्वाद है, उसी का नाम है रस। पांच प्रकार के रस हैं, शाम, दास, साक्ष्य, वात्सल्य, माधुर्य। तो ग्रंथकार ने कहा है कि इन रसों को जब हम आपस में तुलना करते हैं, यद्यपि ये एक एक परम उत्कर्ष को देने वाले हैं, परम श्रेष्ठ है, फिर भी निष्पक्ष होकर के यदि विचार किया जाए तो आदिरस ही सबसे श्रेष्ठ है। आदिरस दो भाग में विभाजित है, एक स्वकीय और एक परकीय। तो स्वकीय रस परकीय रस से निकृष्ट है। क्यों निकृष्ट है, इसका भी समाधान किया गया था। निकृष्ट यही है कि उसमें उपाधि है। रुक्मणी जी कहती है, आगे कहेगी, हम अपने पति द्वारका जिसकी सेवा करती है, इसमें कौन सी बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर ठप्पा लगा हुआ है, हम पर मुहर लगी हुई है, हम द्वारकाधीश की पत्नियां हैं। तो पत्नी होने के नाते पति की सेवा करना ये धर्म है, ये आर्य संस्कृति है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। परंतु आर्य प्रथम च हित्वा, ये गोपीजन कहती है, आर्य प्रथम च हित्वा, जिन्होंने आर्य पथ का परित्याग करके भक्ति करी है वो श्रेष्ठ है, वो परम पुण्य है, वो परम वंदनीय है। दुस्तेज्य आर्य पथम च हित्वा भेजू मुकुंद पदवीं श्रुति हिर ब्रह्मज्ञान, है ना। दुस्तेज्य आर्य पथम च हित्वा भेजू मुकुंद पदवीं श्रुति हिर ब्रह्मज्ञान, उद्धव जी के उद्गार है। सभी आचार्य लोग कहते हैं सुविधा है, भक्ति हुई, कौन सी बड़ी बात है, असुविधा में भक्ति होती है, ये बड़ी बात है। ब्रह्मचारी बहुत हुए हैं वन प्रदेश में रह करके, पर कुरु सभा में सुंदरी अंगनाओं के ललनाओं के बीच में रह करके ब्रह्मचारी रहना ये भीष्म पितामह के लिए ही संभव है। अतः उन्हें परम व्रतधारी भीष्म कहा गया। समस्त कल हमने ये भी कहा था कि गंभीरता का क्या, गंभीरता की क्या परिभाषा है, गंभीरता का परिभाषा निर्णय किया गया था, शब्द बाधाओं के होने पर भी जो साधक अपने लक्ष्य से च्युत नहीं होता वो गंभीर माना जाता है, उसी का नाम है गंभीरता। ये सब बहुत ध्यान देने योग्य बात है। सैद्धांतिक ग्रंथ यह है, ये भी प्रसंग में कहा गया था शास्त्र जो मुझे पुनरावृत्ति करनी पड़ती है क्योंकि कई नए लोग हैं। ये भी कहा गया था कि शास्त्र की रचना की शैली दो प्रकार की है, एक है सिद्धांत शैली, एक है संवाद शैली। संवाद शैली का अर्थ होता है एक प्रश्नकर्ता वक्ता से पूछता है, ये बताइए ये बताइए, जैसे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, जैसे मैत्रेय विदुर संवाद, जैसे नारद व्यास संवाद, जैसे उद्धव कृष्ण संवाद, जैसे दत्तात्रेय यदु संवाद, जैसे विदेह राजन एवं नवयुगेंद्र संवाद है। सिद्धांत वही है परंतु प्रक्रिया रीति ढंग अलग प्रकार का है। परंतु और कुछ शास्त्र है जिसमें संवाद नहीं है, जैसे नारद भक्ति सूत्र, जैसे ब्रह्म सूत्र, ऐसे जैसे स्मृति शास्त्र, ये शास्त्रों की परिपाटी रही है। तो सनातन गोस्वामी जो इस शास्त्र को प्रस्तुत करते हैं हमारे समक्ष, ये संवाद शैली है, एक दूसरे का वार्तालाप है। ये थोड़ा अधिक आस्वादन करने योग्य है क्योंकि सिद्धांत में व्यक्ति परेशान हो जाता है। 555 ब्रह्म सूत्र की व्याख्या जब व्यक्ति करेगा और उसमें अध्ययन करेगा तो उसका मिजाज ढीला हो जाएगा। पर ये संवाद है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसने क्या कहा, ऐसा प्रश्न उत्तर है। तो ये संक्षेप में संपूर्ण सारांश यही है। तो सनातन गोस्वामी अपने अनुभूति से जो जिस रहस्य का उद्घाटन किया है वही रहस्य हमारे समक्ष रख रहे हैं, और वक्ता है महाराज परीक्षित जो थोड़े समय में जाने वाले हैं, और परम भक्ता उत्तरा इस कथा के श्रोता है। तो उनके माध्यम से ये हमें प्राप्त हुआ है। बहुत उच्चतम कोटि का ये शास्त्र है जो हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए, समाज के लिए ये एक अत्यंत अत्यंत उपादेय एवं पोषक ग्रंथ है। पोषक जिससे हमको पोषण शक्ति, भक्ति की पोषण शक्ति प्राप्त होती है। तो आइए हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। हाँ, ये भी कहा गया था ये ग्रंथ दो भाग में विभाजित है, आद्य एवं अंत। प्रत्येक खंड में 7-7 अध्याय है और इस खंड के जो 7 अध्याय है ये है भौम्य, दिव्य, प्रपंचातीत, भक्त, प्रिय, प्रियतम, पूर्ण कृपा पात्र, इसका निर्णय किया गया है। ये भी कहा गया था कि चाहे रस कितना भी हो, कैसा भी हो, पर पात्रता नहीं है वो व्यक्ति उस रस को धारण नहीं कर सकता। इसलिए सनातन गोस्वामी हमें जो दिव्याति दिव्य अति उज्जवल माधुर्य उज्जवल रस देना चाहते हैं तो हमारे चित्त को उतना उज्जवल बनाना चाहते हैं, उतना पारदर्शी बनाना चाहते हैं, उतना सक्षम बनाना चाहते हैं जिससे हम उस रस को धारण करने के लिए हमें पात्रता आ जावे। कविराज गोस्वामी इसकी पुष्टि करते हुए कहते हैं, एक बात भागवत बड़ भक्ति रस शास्त्र, आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। एक रस का ग्रंथ है और उसको धारण करने वाला पात्र जो है वही भक्त है। भक्त की कोई परिभाषा नहीं है, भक्त की परिभाषा है वो भक्ति रस का पात्र है। कितने सुंदर परिभाषा। हम क्या है, हम उस रस को धारण करने वाले का पात्र है, पात्र, पॉट अंग्रेजी में कहते हैं, बस यही सर्वोच्च परिभाषा हमारे लिए है। तो आइए कैसे सनातन गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं, हम पर्याय से इसका श्रवण करेंगे जिससे हमें बहुत ही दिव्य आनंद तथा सिद्धांतगत लाभ मिलेगा। तो प्रथम अध्याय में जो भोग है उसमें दो भक्तों की कथा आई है, एक है प्रयाग क्षेत्र अंतर्गत धनाढ्य ब्राह्मण और दक्षिण भारत के एक क्षत्रिय राजन। तो दोनों में भक्ति है परंतु तारतम्य क्या है, दोनों में धन है। भक्ति में तारतम्य यही है, वो धनाढ्य ब्राह्मण कभी कभी उत्सव आदि में श्रीहरि की भक्ति करता है, जैसे प्रयाग में कुंभ मेला आदि है, कभी कुछ उस उत्सव त्योहार आदि आता है उसमें व्यक्ति भक्ति करता है, ठीक है, अच्छी बात है। परंतु उस भक्त की महिमा उससे श्रेष्ठ है जो नित्य प्रति भक्ति करता है। गीता में बार बार इसकी पुष्टि हुई है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। इसमें तीन शर्तें हैं, अनन्य चेता यो माम स्मरति नित्यशः, नित्यशः प्रतिदिन स्मरण है और स्मरण की क्रिया अखंड अवारित तैल धारावत चले, उसी से ही भक्त को सत्य की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं कि अभी स्मरण हुआ और फिर खंडित हुआ, प्रतिहत नहीं होना चाहिए भक्ति अप्रतिहता। मंगलारती आ गए, फिर जप करने लग गए, फिर स्वाध्याय करने लग गए, फिर तुलसी परिक्रमा करने लग गए, फिर शास्त्र चर्चा करने लग गए, फिर जो इष्ट हमारे घर पर है उनके भोजनादि प्रबंध करने के लिए हमको कुछ जिनका चलानी चाहिए उसके पीछे लग गए, यानी कि दिन रात प्रातः काल 6 बजे से लेकर के दूसरे 6 बजे तक 24 घंटों भक्ति में जिसका व्यतीत होता है वही आस्तिक है। अन्यथा नास्तिकता आने की काफी संभावना है। जिस समय उसने श्रीहरि को भुला दिया उसमें नास्तिकता का परिचय दिया, यही और आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा है, एक बड़ा उच्चकोटी की परिभाषा है। भक्त कभी नहीं भूलता हरि को, कैसे भूलेगा, इसलिए हरि ने हमको कायदा सिखाया, क्या है, पानी पीते समय बोलो रसो हम आपसु तंते, अग्नि जलाते समय ये विभावसु है ना, ये जात विदा है, सूर्य को प्रणाम करते समय यहाँ भी नारायण है, धैयम सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सनसन्निविष्टः, चंद्रमा को देखो प्रभासमी सरसि सूर्य को, किसी सुंदर व्यक्ति को देखो श्रीहरि कहते हैं श्री, किसी के जस को देखो कीर्ति, किसी की वाणी को देखो वाणी, तो सब जगह में हरि ही हरि है। यही महात्माओं की अनुभूति है, इसी का नाम है ज्ञान, इसी को प्राप्त करने के साधन का नाम है विज्ञान। तो वो ब्राह्मण कहता है हम श्रेष्ठ नहीं है, उस दाक्षिणात्य क्षत्रिय के पास जाओ, तो वो क्षत्रिय कहता है हम भी श्रेष्ठ नहीं है, परंतु दोनों की दृष्टि भौतिकता में है, थोड़े थोड़े संपदाएं हैं उसी से भक्ति करना चाहते हैं, जीविका छूटती नहीं है, अर्थ उपार्जन हो रहा है, बच्चे पत्नियां परिवार सब कुछ कुशल मंगल है, संकल्प कर रहे हैं जो हमको इतने लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए, और लक्ष्मी लेकिन मिल गई है तो उसको उसकी सुरक्षा हो जाए, हमको आयु ऊर्जा सुख धन कर्म कांड में ये प्राप्ति अर्थम अहम संकल्पम करिष्ये, बस हम वो करता है, पर इससे इससे निरावरण मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। चलो क्षत्रिय बहुत अच्छा है, एक महत्वपूर्ण बात है, यद्यपि जाति का ब्राह्मण थे परंतु उन्होंने कहा नहीं वो क्षत्रिय के पास जाओ वो श्रेष्ठ है, तो इससे जाति निराकृत हो गई। जेई भजे सी बड़ अभक्त हिन छार, कृष्ण भजने नहीं जाति कुलादि विचार। तो इससे यह हो गया नहीं आप जाइए उनके पास, पर वो कहता है हमारे पास भक्ति नहीं है, देवता लोग बहुत भक्ति करते हैं। देखिए दोनों की दृष्टि अधिक से अधिक धन तक है, स्वर्ग तक है, बहुत ज्यादा नहीं, वो ऊंचे सवा इंद्र की जो संपदा है उसका वर्णन करता है, तो यहां तक पूर्वाभास है। अब आइए आज के प्रसंग में प्रवेश करते हैं, द्वितीय अध्याय। द्वितीय अध्याय में आप देखेंगे जैसे भौम लीला में वो ब्राह्मण और क्षत्रिय इनमें भक्ति का तारतम्य है, यहां पर आप दिव्य माने स्वर्ग लोक के प्रसंग में देखेंगे इंद्र कहते हैं इंद्र जी से ब्रह्मा जी की भक्ति श्रेष्ठ है, परंतु दोनों असंतुष्ट है। कोई भी इस अध्याय में जितने पात्र आएंगे कोई भी व्यक्ति आज तक भक्ति में संतुष्ट नहीं हुआ है और होना भी नहीं चाहिए। चाणक्य पंडित ने कहा तीन चीजों में सदा असंतोष रहो, तीन चीजों में सदा संतोष रहो। संतोषम सदा कर्तव्यम सोदारे भोजने धने, अपनी पत्नी, अपना अपने दार, भोजन कैसा भी हो और धन कितना भी हो, ये तीनों में सदा संतोष रहो। संतोषम सदा कर्तव्यम स्वदारे भोजने धने, संतोषम नैव कर्तव्यम तप दान अध्ययन। तपस्या माने हरि भजन, तपस्या शब्द का अर्थ हमेशा ध्यान देना हरि भजन। तो तप करने में, दान देने में और अध्ययन स्वाध्याय भी करने में कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए। जो संतुष्ट हो गया वो गया, इसलिए भक्ति में संतोष नहीं है। तो इंद्र के पास ये भेज देते हैं, तो श्री नारद कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हमको इंद्र जी के पास जाना चाहिए। तो वो इंद्र के पास चले जाते हैं। इंद्र के पास जाकर के क्या देखते हैं नारद जी, बहुत दिव्यादि दिव्य रूप को देखते हैं। इंद्र के पास जब जाते हैं नारद जी, देखते हैं इंद्र की सभा में उनके छोटे भ्राता के रूप में श्री उपेंद्र जी विराजमान है। बहुत सुंदर सिंहासन है, कहा गया है श्री विष्णु उपेंद्र विराजमान है, देवताओं के बीच सभा मंडल में सुशोभित हो रहे हैं। उनके गला जिसमें दिव्य पुष्पों की माला, वस्त्र आवरण से सुसज्जित और भोजन करने के लिए अमृत, क्या चाहिए, सुंदर सुंदर कपड़े और दिव्याति दिव्य आवरण वस्त्रावरण, और भोजन के लिए क्या है, ये कूड़े करकट नहीं है, अमृत पान कर रहे हैं। और वामन देव की पत्नी भी है, वामन देव विवाहित है, ब्रह्मचारी नहीं है। जब गए थे बलि महाराज उस यज्ञ स्थल पर, उस समय उनका ब्याह नहीं हुआ था, बाद में विवाह कर लिए। उनके पत्नी का नाम है कीर्ति, तो कीर्ति देवी तांबूल दे रही थी, पान बीड़ा दे रही थी और प्रभु को बड़ा आनंद आ रहा था। तो ग्रंथकार लिखते हैं तो वामन भगवान ऐसे मुद्रा करके पकड़ते थे पान को, अनामिका अंगुष्ठी और अंगूठा, ये दोनों में बहुत लीला है, ये प्रभु की का मुद्रा है। तो पान खा करके खिलखिला करके हंसते थे और देवताओं को कहते थे डरो मत मां भाई, हम तुम्हारे पीछे है ना, काहे को डरते हो, असुर आ जावे तो आ जावे, हम उनको भगा देंगे, डरो मत, आप सुख संपद में रहो, सब कुछ करो। तो इस भाव में जब नारद जी को दर्शन हुए, नारद जी कहते हैं ओहो भाग्यम, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हे इंद्रदेव, हे पुरंदर, हे सहस्राक्ष, आप ही वास्तव में श्रीहरि की कृपा पात्र हैं, क्योंकि आपके पास इतनी संपदा है, आपके दरबार में, आपकी सभा में साक्षात श्री विराजमान है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जाकर कीर्तन करते हैं, श्री का कीर्तन करते हैं, इंद्र उठ कर आ जाते हैं, देवर्षि नारद जी का स्वागत करते हैं, देवर्षि उनके स्वागत सत्कार को ग्रहण करते हैं। तो इंद्र भी अपने सहस्र सहस्र नेत्रों से अश्रु बहाकर के भगवान का गुणगान ही कर रहे हैं। इंद्र का एक नाम है सहस्राक्ष, आप सब जानते हैं, उनको श्राप मिला था और उनके शरीर में केवल आंखें आंखें हैं। वैसे देखा जाए इंद्र पद के लिए ये सब शास्त्र अध्ययन करके हमें अनुभव होना चाहिए, क्यों इंद्र बनना चाहते हो, क्यों चाहना भी चाहिए, उनके शरीर में केवल आंखें आंखें हैं, क्या करोगे इतने आंखें का करके, प्रभु ने अच्छा किया हम लोग दो आंखें, दो कान, एक मुख, नहीं तो देखो कितने अजीब अजीब प्राणी है, सबसे बढ़िया है ये संसार में कोई भी प्राणी ऐसे सीधा भोजन नहीं करता, सबका सब झुका हुआ है। मानव शरीर ये हमें कहना चाहते हैं, तुमको हमने मानव तन दिया, तुम्हारा सर ऊंचा है, इसलिए ऐसा कर्म करो ताकि ऊंचे पे जाओ, है ना। कोई भी जीव इस तरह से भोजन नहीं करता, शेर भी खाता है तो झुक करके पानी पीता है, पानी खाता है, लेकिन मानव सीधा खाता है। पर दुख यही है। और वाग सुतस्तु नवम क्षतो एक विधा नृणाम रजोधिका कर्म परा दुखे च सुख मानिना। प्रॉब्लम यही है, इसमें रजोगुण इतना भर दिया, तमगुण का प्रभाव इतना हो गया, दुखे च सुख मानिना। वो जानता है कि इसमें दुख है, लेकिन उसमें वो सुख बुद्धि करके फल जाता है। यथा प्रतीक्तम ज्वलनम पतंगा विषंति नासाय समृद्ध वेगा। इत्पत्ति के दशा में रजोधिका, परंतु एक प्रकार से यदि इसके जो डार्क साइड अंधकार पक्ष को काट दिया जाए, मानव धन सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है मानव धन। इसलिए प्रभु ने हमको वर्टिकल सीधा बनाया, सीधा खड़े रहो, सीधे काम करो, साधु बनो और ऊंचे आसमान में अपनी भक्ति का झंडा फहराओ, यही मानव धन का लक्ष्य है। इसीलिए हम आए हैं। हमारे महाराज कहते हैं संसार में बहुत बड़ी बड़ी आंधी आती है, बड़े बड़े पेड़ भी धराशायी होते हैं, लेकिन उठ के खड़े हो जाना यही बड़ा धन है। आंधी में गिरना ये बड़ी आंधी तो आएगी, पर खड़े हो जाना ये सब हरि भरोसे से संभव हो जाता है। इंद्र की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं नारद जी, आहा। पर इंद्र कहते हैं हे नारद जी, आप हमारा उपहास क्यों करते हो? आप गंधर्व कला विशारद हो। गंधर्व कला माने दूसरों को हंसा सकते हैं, रुला सकते हैं, जो गाते हैं जैसे अभी प्रभु जी गा रहे थे, इसको गंधर्व कला कहते हैं। शास्त्र में कहता है जो मनुष्य आनंद लूटता है विषय भोग से, उसको मनुष्यानंद कहते हैं, ऐतरेय उपनिषद में है, उसको मनुष्यानंद कहते हैं। पर मनुष्य को विषय से जितना सुख होता है, तो मनुष्य में जो गवैया गायक आदि होते हैं, वो भजन आदि अथवा गीत संगीत आदि करते हैं, तो उनसे उनको 100 गुना सुख ज्यादा होता है। उनको कहते हैं मनुष्य गंधर्वानंद। ये सब मनुष्य जिनको कला है गाने का बजाने का, उनको मनुष्य में गंधर्व कहते हैं। अब देखो प्रभु जी जो गा रहे थे हरे कृष्ण महामंत्र, हमें लगाया अंदाज की वो शिवरंजनी धूम थी, है ना प्रभु जी? शिवरंजनी, शिवरंजनी की धूम चले और आंखों से वर्षा नहीं होगी, ऐसा हो नहीं सकता। शिवरंजनी वो भूख प्यास भुला देती है, वो धूम कई ऐसे दो महीने भैरवी मल्हार हरिदास जी गाए थे, वृष्टि हो गई तो उनका आनंद वही जाने, वो जाने। ये देवराज इंद्र कहते हैं हे गंधर्व कलाविज्ञ, आप हमारा उपहास क्यों करते हो? आप हमारे खेली क्यों उड़ाते हो? इतनी प्रशंसा क्यों करते हो? हम इतने प्रशंसा के योग्य नहीं है। एक एक अपना अवगुण दिखाते हैं। वास्तव में अवगुण दिखाने से ही प्रगति है, पर हम लोग में अवगुण क्या है, हम उसको छुपा देते हैं, हम उसी को ही छुपाते हैं। और थोड़ी थोड़ा बहुत कहीं गुण है, मान लीजिए एक दिन है मंगलाज जी से पहले हमारा जप हो गया, हम उसको 8-10 लोगों को बता देंगे, हाँ भाई जानते हो आज प्रातःकाल 3 बजे हाँ 2:45 बजे हमारी नींद खुल गई, मंगलारती आने से पहले हमारा जप हो गया। अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु जो अवगुण है, जो संचित धन है, वो हम निकालते हैं। पर जब हम शरणागति का आचरण करते हैं, प्रभु इतने प्रेमी है, इतने परम, यही तो दयालुता है, इतने दयालु है, उस संचित धन को निकाल के फेंक देते हैं। वो धन नहीं है, वो कुधन है। कुधन क्या है? धन, धन कहलाने लायक नहीं है। इसीलिए उनको चौराग्रगण्य कहा गया, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम उसको फेंक देते हैं। आप हमसे क्यों मजाक करते हैं, ये सब ठीक नहीं है। आपने जो कहा यहां सब इतनी इतनी सुविधाएं हैं, क्या सुविधाएं हैं? क्या आप नहीं जानते बलि ने कितनी बार चढ़ाई कर दी? क्या स्वर्ग की संपदाएं हैं? यहां हमेशा ईर्षा द्वेष स्पर्धा, स्पर्धा एक बहुत एक शब्द है, स्पर्धा शब्द का अर्थ क्या है? दूसरे के सुख को प्राप्त करने के लिए हमेशा स्पर्धा बनी रहती है, लड़ाई झगड़ा, ये स्पर्धा बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। देवराज कहते हैं यहां स्पर्धा है, त्रैविद्या माम सोम पाहा पुत पापा स्वर्ग लोकम प्राप्यन्ते ते पुण्य माता ते सुरेंद्र लोकम अस्मन्ति दिव्यान दिदेव भोगान। आते हैं जाते हैं, और यहां जैसे बड़े छोटों में पूंजीवादी और दादन श्रमिक, ये दोनों में हमेशा भेद है, ये उनको टेढ़ी नजर से देखते हैं, वो उनको भी टेढ़ी नजर से देखते हैं। वहां पर भी वही है जो अच्छे अच्छे कोटि के देवता है, देवताओं में भी ग्रेड है, ध्यान देना चाहिए, देवताओं में भी श्रेणी है, कोटियां हैं। गंधर्व जैसे भूतेषु भूतभ्यः उत्तमं हि सरीसृपासेषु सर्वोधनिष्ठा ततो मनुष्या ब्रह्मधातुं ततोऽपि गंधर्व शूरा विबुधानुगाये। मनुष्य एक ग्रेड है, गंधर्व श्रेष्ठ है, उससे देव श्रेष्ठ है, फिर उससे इंद्र श्रेष्ठ है, फिर दक्ष के पुत्र श्रेष्ठ है, ये सब श्रेष्ठ श्रेष्ठ सब लिखा हुआ है। तो वहां पर भी स्पर्धा है, हमको कई बार भागना पड़ा। हम पर ब्रह्महत्या लग गई सब जानते हैं, हमने गुरु की हत्या कर दी थी, फिर उठी हम पर ब्रह्महत्या भागी, उस हत्या को हमने स्त्रियों में, वृक्षों में, भूमि में और जल में बांट दिया, दोबारा भी लग गई, हमको भारी कष्ट भारी पीड़ा उठानी पड़ती है। आप कहते हो स्वर्ग में भारी शुक्र, शुक्र है कहां? और आप कहते हो कि हम श्रीहरि के कृपा पात्र हैं, कहां कृपा पात्र है? यदि हम श्रीहरि के कृपा पात्र होते, आप कहते हो ठीक है पूजा होती है, इंद्र यहां ये उपेंद्र के रूप में विराजमान है, परंतु ये तो कोई कृपा नहीं है। यदि हम कृपा पात्र होते तो श्रीहरि ने हमारे यहां से पारिजात पुष्प और सुधर्मा सभा क्यों ले गए? देखिए यहां पर उनकी जो मनोवृत्ति को देखिए, वो ब्राह्मण कह रहे हैं उसके पास बहुत ज्यादा धन है, क्षत्रिय के पास वो कृपा पात्र है। यहां इंद्र कह रहे हैं हमसे वो पारिजात पुष्प सुधर्मा सभा ले गए, इसीलिए हम उनके कृपा पात्र नहीं है। यदि पारिजात यहां छोड़ते तो हम कृपा पात्र मानते। माने यहां स्वसुख वासना बहुत है, हम होगी हम भोग करेंगे, यहां भक्ति बिल्कुल नहीं। इंद्र का जो कथन है बिल्कुल सही है, पूरे भागवत के प्रकरण में इंद्र जो कहते हैं कि हमारी भक्ति नहीं, सचमुच में भक्ति नहीं है, और उनमें मूर्खता भी सिद्ध हो गया। गोवर्धन का प्रकरण हम कहेंगे कि भाई सुधर्मा सभा को ले गए पारिजात पुष्प, इसका हम वर्णन नहीं करना चाहते क्योंकि समय स्वल्प है, आप लोग अध्ययन कर लेना चाहिए। वास्तव में सनातन गोस्वामी ने कहा ये जो प्रकरण ये सब चल रहा है ये केवल भागवत को आस्वादन करने का एक एक उपाय मात्र है, नहीं तो यहाँ पर केवल भागवत शास्त्रों की विशेष चर्चा है। सनातन गोस्वामी को अति प्रियाति प्रियतम ग्रंथ है भागवतम। मदेक बंधो मत संगेन मद गुरु मन महाधन मन्यस्तारक मदभाग्य मदानंद नमस्तुते असाधु साधुता गायन अतिथि चोचता कर हाना मुंचे कदाचिन माम प्रेमणारित कण्ठयोस्तु। ऐसी स्तुति किसने नहीं करी भागवत की? उन्होंने कहा था तो सवेरे जो हमने कहा था दारिद्र दुख, पर सनातन गोस्वामी ने और आगे कहा, बोले अति नीचोचता कर, जो नीच है समाज में पति दलित यदि वो भागवत का आश्रय लेता है शवनाय कल्पते, वो भी उच्च दर्जे पर आ जाता है। ये भागवत की महिमा है। तो कैसे ना कैसे सनातन गोस्वामी भागवत की चर्चा करना चाहते हैं आप लोग देख लेना, क्योंकि प्रश्न बहुत हमें जाना है। तो पारिजात क्यों लिए थे और सुधर्मा सभा क्यों लिए थे देख लेना। गोवर्धन धारण के समय केवल हम एक बात को यहां उठा लेते हैं, इंद्र की कैसी मूर्खता है, भाई ठीक है उन्होंने तुम्हारा यज्ञ बंद कर दिया और आप कुपित हो गए, आपने वर्षा कराई, आंधी हुई, मोटी मोटी धारा से बारिश होने लगी, तो उस समय सभी ब्रज के लोग दुख में थे। मधुमंगल आदि कन्हैया चुपचाप थे, बैठे थे, तो वो बीच बीच में कहते हैं मधुमंगल उसको, कृष्ण भद्र अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वो समय आ चुका है, जो हमने अपने वचन दिए हैं भक्तों को कि तुम्हारा विनाश नहीं है। सकदेव प्रपन्नाय यस्तवास्मि इति च याचते अभयम् सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतम् मम, ये मेरा व्रत है, मैंने व्रत कर रखा है और उसकी पूर्ति का समय अभी आ गया है, वो करना पड़ेगा। मधुमंगल कहते हैं जा, बड़ा पहलवान दिखाता है तू, क्या उठा सकता है, तो हमारे साथ खेलता है, हमको उठा नहीं सकता, घोड़ा बनता है तो चिल्लाता है जब तेरे पीठ पर हम बैठ जाते हैं, तू क्या उठाएगा गोवर्धन, क्या तू रखा करेगा, तुझे विश्वास नहीं हो रहा है का? हाँ हो रहा है, कैसे होगा प्रसिद्ध, कैसे होगा बताओ। तो कृष्ण कहते हैं तू बता, जो तू कहेगा सुन करेगा। ये घटना है पेठा गांव की, परिक्रमा पेठा गांव आता है। बोले वहां पर एक कदम का वृक्ष था, तो मधुमंगल ने कहा कान्हा यदि इस पेड़ को तुम ऐंठ दोगे, टेढ़ा कर दोगे, तो हम मानेंगे कि तू कुछ ना कुछ कर सकते हो, तेरे में बल है। कान्हा ने कहा यही बात है, बस अब जाते हैं। तब गए तो उस पेड़ को ऐसे ही मरोड़ दिए, ऐंठ गया ना, टेढ़ा हो गया, इसीलिए उस कदम का नाम पड़ा ऐंठा कदम, पेठा गांव का ऐंठा कदम। आप देख सकते हो जाकर परिक्रमा में। तो मधुमंगल ने कहा अब तो होएगो, अब बहुत अच्छा है, अब तो उठा लगे, चलो चलते हैं। तो जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाया तो इंद्र की भारी बारिश हो रही थी, तो वज्रपात भी हो रहा था, पर इतने मूर्खता थी, क्रोध में रोष में व्यक्ति की बुद्धि खत्म हो जाती है, वो जितने भी वज्र मार रहा था, क्या आप सोच रहे हो ब्रज बहुत लंबा है 84 क्रोश, गोवर्धन तो एक जितना भी है थोड़ा बहुत है, पर लोग मान लीजिए यहां से तो वहां तक जाएंगे ना 2-5 किलोमीटर तो जाएंगे, नहीं जाएंगे 1-2 कोस तो जाएंगे, तो तब तक वज्र में तो एक का बाल भी भांगा नहीं हुआ। अगर तुमको मारना था तब वज्रपात क्यों नहीं कराया, होता था, ऐसा नहीं कि वज्रपात नहीं होता था, पर कोई एक भी मरा नहीं। इस पर सोचिएगा, सोचा कभी भाई ऐसा तो नहीं कि सभी वही पास थे, 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर से लोग आएंगे, तो भारी वर्षा हो रही थी, कहते हैं हाथी के सूंड के समान वर्षा हो रही थी, परंतु कोई एक भी किसी के शरीर में आज तक नहीं आई, क्षत तक नहीं हुआ। वज्रपात तो हो रहा है, देखो लोग कितने मरते हैं, और कहा गए वज्रपात हो रहा था, तभी भी इंद्र की बुद्धि नहीं आई, अरे भाई तुझे देख लेना चाहिए था, तुमने संवर्त को बुलाया, जाओ जाकर के घर घोर वर्षा करो, हो रहा है सब कुछ, परंतु किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे, कहां तक तो कल्पना है, कहते हैं प्रभु ने कैसे गिरिराज उठाया, तो उन्होंने हमारे श्री जी के नेत्रों को देखा, उनमें थोड़े ना बल था, वो श्री जी के नेत्रों को देख देख करके उनमें बल आ गया, इसलिए उन्होंने उठा लिया, श्री जी उनके सामने खड़ी, श्री मुख चंद्र चकोर। तो इंद्र जी की वास्तव में ये दुर्वार्ता है, ये उनकी दुर्बोधता है, वो जो कहता है कि कृपा नहीं है वो सचमुच नहीं है। और भी देखिएगा लड़ाई भी हो गई कई बार, ये सुधर्मा सभा के इसमें लड़ाई, तो इंद्र जी कहते हैं देखो गोवर्धन जी ले गए, और एक बात है खांडवन दहन के समय, उस समय भी युद्ध हो गया था, तो इंद्र का कहना है इतनी सारी घटनाएं घटी है वो हम पर कोई कृपा नहीं है, कोई कृपा नहीं है वो। अच्छा प्रश्न उठेगा फिर तुम्हारे सभा में उनकी पूजा कैसे होती है, तो इंद्र कहते हैं भैया ये पूजा जो श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं ये हमारे कहने से नहीं, वो हमारे पिताजी माताजी ने बड़ा तप किया था, कश्यप और अदिति है ना, उन्होंने तपस्या की थी, बोले उनके तपस्या के प्रभाव से बृहस्पति के कहने से वो आकर के हमारी यहां पूजा स्वीकार करते हैं। इसीलिए इसमें हमारा कोई बढ़पन नहीं है, हम कृपा के पात्र नहीं है। आप कृपा करके श्री ब्रह्मा जी के पास जाइएगा, वास्तव में वो कृपा के पात्र हैं, वो आपके पिता है और वो साक्षात श्री कृष्ण के गुणावतार है। वो गुणावतार क्या है, वो साक्षात श्री कृष्ण ही है। आप वहीं जाइएगा, वहां पे आपको कृपा की उपलब्धि हो जाएगी। तो ये बहुत लंबा लंबा प्रकरण है, हमने तो वृत्रासुर का प्रसंग, विश्वरूप का प्रसंग ये सब छोड़ दिया, परंतु भाव यही है, इंद्र अपनी कमी दिखाते हैं कि इन इन घटनाओं से हमारे में कोई कृपा नहीं है, हम कृपा के पात्र नहीं है, वास्तविक कृपा पात्र आपके पिता से ब्रह्मा जी है, आप उनके पास जाइएगा। तो श्री ब्रह्मा जी के पास श्री नारद जी जाते हैं। स्वयंभू, देखो 12 महाजनों में से एक महाजन है स्वयंभू ब्रह्मा जी और एक महाजन नारद जी भी है, ये दोनों महाजन है। और नारद जी अभी जा रहे हैं कृपा पात्र निर्णय करने के लिए, भूमिका अदा कर रहे हैं, तो उनके पास जाकर के पहुंचे, लंबी जरूरत की है। परंतु इंद्र ने जो जो वर्णन किया था, उन्होंने ब्रह्मलोक में भी ऐसा ऐसा देखा कि ब्रह्मलोक में उन्होंने क्या देखा, ब्रह्मलोक में एक दिव्य रूप उन्होंने देखा। एक विशेष बात इसमें लिखा हुआ है, महापुरुष रूपेण जटामंडल मंडितः सहस्र मूर्धा भगवान यज्ञ मूर्ति श्री आसा, साक्षात श्री लक्ष्मी जी के साथ प्रभु विराजमान है, जटामंडल मंडित उनके अनेक अनेक शिर है, अनेक अनेक भुजाएं हैं और उन मस्तक पर जटा सुशोभित है, और श्री लक्ष्मी जी के साथ वो ऋषियां जो जनलोक सत्यलोक के ऋषियां वेद के ऋचा उच्चारण कर रहे हैं, और प्रभु महा आनंद से वो हवि वो यज्ञ भाग ग्रहण कर रहे हैं, यज्ञ मूर्ति, इसलिए यहाँ पर कहा गया यज्ञ मूर्ति श्रेया साहा, क्योंकि ब्रह्मा जी के जो परिवार हैं प्रभु, उनके परिवार में वेद, वेद पुराण उनका परिवार है, तो वेद की जो ऋचाएं हैं ये उच्चारण करते हैं, तो वहां विराजमान है साक्षात यज्ञ मूर्ति। तो नारद जी जाकर के कहते हैं, वो परमेश्वरी, आप ही श्री कृष्ण के कृपा पात्र, क्योंकि आपके यहाँ साक्षात ठाकुर जी यज्ञ भाग ग्रहण करते हैं और हम साक्षात देख ही रहे हैं, कितनी सुंदर बात है। ब्रह्मा जी दुखी हो गए, बार बार जब इन्होंने उनकी प्रशंसा की और नारद जी ने यहां तक कह दिया, इंद्र जी ने तो कहा था ये तो साक्षात गुणावतार नहीं, साक्षात श्री कृष्ण ही है, तो नारद जी ने कह दिया आप तो साक्षात श्री कृष्ण ही है, आप साक्षात श्री कृष्ण ही है। तब जब साक्षात श्री कृष्ण ने कहा तो ब्रह्मा जी को भारी क्रोध आया, बहुत क्रोध आया, लेकिन वो सुन नहीं पा रहे थे। आप लोग सब जानते हो श्री ब्रह्मा जी के 4 हाथ हैं और 8 कान हैं, तो बड़ी समस्या, विकट स्थिति पैदा हुई। जैसे मान लीजिए हम किसी बात को सुनना नहीं चाहेंगे तो हमारे 2 हाथ हैं और 2 कान को बंद कर देंगे, हम उनको सुना नहीं देगा। पर नारद जी जो प्रशंसा कर रहे थे तो प्रशंसा को ब्रह्मा जी पसंद नहीं कर रहे थे, वो सुनना नहीं चाहते, पर उनके लिए मुश्किल यही थी कि उनके 8 कान हैं 4 हाथ हैं, तो 2-4 हाथ से 4 कान बंद कर दे तो फिर 4 कान सुनता है। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि लोटपोट हो रहे थे, वो जल्दी जल्दी बंद करते थे, आगे पीछे हो रहे थे, बाद में कहे बंद करो। मैंने कितने बार कहा बेटा मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं तो उनका दासा हूं, दास हूं। भागवत में ये श्लोक में कहा गया है, भागवत श्लोक में श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, जब नारद जी ने 6 प्रश्न किया था, दूसरे अध्याय दूसरे स्कंद में, दूसरे स्कंद के शायद 5 अध्याय में, हाँ जी, नारद जी के 6 प्रश्न है, तो उन्होंने कहा था हमें ये बताइए इस सृष्टा कौन है, किस प्रदेश में सृष्टि टिकी हुई है, ऐसे प्रश्न किया था। तो उसी में ब्रह्मा जी भागवत के श्लोक उद्धार अपने श्लोक उद्धार करते हैं, तस्मै नमो भगवती वासुदेवाय धीमहि जन्माया दुर्दयया मां भगवती जगदी जगद्गुरु। वो परमेश्वर को, परमेश्वरी को हम प्रणाम करते हैं जिनकी दुर्जय या माया के कारण लोग हमें जगद्गुरु मानते हैं। अरे जगद्गुरु तो एक ही है, जगद्गुरु श्री कृष्ण है, सब जानते हैं जगद्गुरु है, कृष्ण बंदे जगद्गुरु, लेकिन दुर्जय या माया के कारण लोग हमें जगद्गुरु जानते हैं। क्या नारद आप इतने जल्दी भूल गए, मैंने आपको कितना समझाया था कि हम ना तो कृष्ण है, ना तो हम कुछ है, हम तो उनके दास है, हम उनके दास है। आप ऐसा मत कहा करो, इससे मेरा अपमान होता है, ऐसा कहना उचित नहीं है। बार बार ब्रह्मा जी कहते हैं तुम यह बताओ ऐसा कौन सा। अच्छा, नारद जी ने मान लीजिए कहा कि यहां प्रभु विराजमान करते हैं, तो ब्रह्मा जी कहते हैं तुम ये बताओ कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां प्रभु नहीं रहते। भगवान जगतों का भाग तो केवल वेद का प्रचार करने के लिए ही हमसे स्वीकार करते हैं, यहां हमारे आहुति से वो प्रसन्न होकर के ऐसा नहीं है, क्योंकि वेद उनका निश्वास है, तो वेद की इच्छाएं जब उच्चारित तो हो रही है तो उनको ग्रहण करना पड़ेगा, अन्यथा वेद अपमानित होगा। तो आप जो कहते हो कि यहाँ प्रभु विराजमान है, ये वेद के वाक्य को सत्य करने के लिए यहाँ ग्रहण करते हैं, परंतु हमारे ऊपर कोई कृपा नहीं है। क्यों कृपा नहीं है? तो ब्रह्मा जी एक एक कारण बताते हैं। बोले देखो, एक बात तो हम नारद आपको बताते हैं, क्या बात है? बोले जब हिरण्यकश्यप का प्रभु ने वध किया, तो जब प्रचंड घोर भयंकर मूर्ति थी उनकी, वैसे तो हम उनके समीप नहीं गए थे, हमारी स्तुति से तो वो प्रसन्न नहीं हुए थे, पर जब प्रह्लाद जी का राज तिलक हुआ था तो हम शनि शनि धीरे धीरे करके प्रभु के पास हम चले गए, लेकिन प्रभु हमको देख करके बुरा करके कहते भो ब्रह्मदेव, तुम इस प्रकार के वर और असुरों को कभी मत देना, हमको डांटने लगे। बोले इस तरह से तुम हरकत क्यों करते, क्यों ऐसा वरदान देते हो, उचित नहीं है। इतने कहने पर भी मैंने थोड़ी ना माना और कई असुरों को दे दिया, इसमें उद्धार हुआ है, बोले रावण को दे दिया, और भी कई ऐसे असुर हुए हैं शास्त्र में, हिरण्यकश्यप के बाद सब ब्रह्मावर से बलियान हो गए, सब हरकत करने लगे, विष्णु के विरुद्ध जाने लगे। कहते वो तो छोड़िए, मैंने अपने सृष्टि चलाने के लिए जिन जिन पदवियों की रचना करी है, उन पदवी के जो अधिष्ठाता देव जैसे इंद्र है, इंद्र तो बहुत पंगा किया, बहुत कुछ किया, श्री कृष्ण के साथ लड़ा भिड़ा कुछ किया, वरुण देव ने साक्षात उनके पिता नंद महाराज जी को हरण कर लिया है कि नहीं, यमराज जी ने उनके गुरु पुत्र का हरण कर लिया, लिखा हुआ यहाँ पर, श्री यमराज जी ने पंचजन नाम के दैत्य से उनके गुरु पुत्र को मरवा दिया, ऐसा लिखा हुआ है। तो बताइए, मेरे से अधिकार तो इनको प्राप्त हुआ ना, इंद्र को, वरुण को, यमराज जी को, ये सब हमसे ही बर ले, ये सब हमारे अधिकार से अधिकृत है, परंतु इन लोगों ने जो जो काम किया ना, तो उससे हम आंख उठा करके प्रभु को देख तक नहीं सकते, कैसी कृपा है। और वो तो छोड़ो, अभी अभी की बात देखो, अभी अभी वृंदावन हम गए थे, हमारे मन में थोड़ी सी शंका हो गई, चलो चले ही गए थे, वहां से जब हमने ग्वाल बालों को अपहरण किया तो ला करके अपने देश में आ गए, पर वहां जब जाकर के पहुंचे और देखा कि बड़ी विकट स्थिति थी, अरे हमारे पूर्व में जो ग्वाल बाल है वहां भी वही थे, और प्रभु के पास जाकर के मैं बड़ी लंबी स्तुति की, परंतु एक भी शब्द नहीं कहा, अरे कहना चाहिए था ना, हमने इतनी प्रशंसा करी, और जिसके प्रति अगर जिसका प्रेम होता है, ये स्पष्ट बात है, ये मानव समाज में भी है, यदि हम आपसे प्रभु को कहकर नमस्कार करते हैं, आप हमें आड़े तक देखते नहीं है, तो हम कैसे मानेंगे कि आप हमसे प्रेम करते हैं, कोई नहीं मानेगा। ब्रह्मा जी का तर्क बिल्कुल यथार्थ है, हमने बड़ी लंबी स्तुति कर दी, परंतु उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि इंद्र से तो कहा था, परंतु ब्रह्मा जी को एक शब्द तक नहीं कहा। इसको भी मैं संक्षिप्त कर देता हूं, इसका निष्कर्ष यही है, ब्रह्मा जी एक एक करके सब बताते चले जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, हम कृपा के पात्र नहीं है, वास्तव में कृपा के पात्र शिव शंभु है। ब्रह्मा जी कितने चार पांच प्रमाण दे दिए, बोले इन प्रमाणों से नारद आप विचार कर सकते हो, आप विचारज्ञ हो, तो आप देखो भगवान शिव शंभु जो शंकर है वो कृपा के पात्र है। बोले उनमें क्या विलक्षणता है? बोले विलक्षणता यही है, जब हमको ठाकुर जी ने कहा वो ब्रह्मा असुरों को ऐसे वरदान दिया मत करो, परंतु जब वृकासुर शंकर के पीछे भागा था, बड़े परेशानी में फंस गए थे, परंतु उनको जब ठाकुर जी ने मारा पर शंभु जब हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे पर प्रभु ने शंकर को दोषारोपण नहीं किया। उन्होंने कहा हे शंकर ये असुर ने अपने पापों से मारा गया। कितना बढ़िया उत्तर। उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा भोले बाबा इनको क्यों आप इस तरह से बलिदान देते हो, परंतु हमको डांट लगा दी। और भी कई कई घटनाएं हैं और सदा सम्मत रहते हैं। उनकी पत्नी जो है ना इस वैभव की अधिकारिणी है, संपूर्ण भूमंडल नहीं, ये प्रकृति जो है विश्व संरचना इसमें जितने भी संपदाएं हैं तो सबके सत्ताधारी है वो पार्वती जी है, दुर्गा जी है, अधिष्ठात्री देवी है वो। परंतु वो शंकर कैसे रहते हैं, परम विरक्त है। आज तक उन्होंने अपने लिए तो फ्लैट तक नहीं खरीदा ना कहीं बुकिंग कराई। अच्छा चलो अपनी जगह में रहे, सदाशिव लोग कहा गया निर्गुण है, गिरजा के परपार है, बोले वहां भी नहीं रहते, उससे भी वैराग्य है। क्या वैराग्य है, बोले कुबेर जो उनके छोटे भाई है उन्होंने उनकी भारी पूजा की। तो पूजा के दौरान प्रभु प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा ठीक है ये जो कैलाश है ना ये थोड़ी जगह हम देते हैं, आप यहीं पे रहो। तो प्रभु ने कहा ठीक है हम यहीं रहेंगे। और वहां भी कोई बहुत बड़ा मकान नहीं है, वो एक बरगद वटवृक्ष है उसी के नीचे प्रभु विलासा में बैठते हैं, तो श्री हरि कथा चलती रहती है। और करताली को भी दासी उमा जी वहां करताली देती है। इसीलिए भागवत प्रमाणित करती है योगमाया श्री सुभद्रा की तरह प्रभु की ये छोटी बहन जो अंबिका है इसे भी प्रभु की बड़ी प्रीति है। और हे पार्वती, ब्रह्मा जी कहते हैं आगे चलकर शंकर भी कहेंगे पार्वती हमने तुमसे इसलिए ब्याह किया कि तुमको हरि कथा बहुत अच्छी लगती है और तुम हरि कथा में ताली बजाती हो, इसलिए हमने तुमसे विवाह कर लिया है। ये के भाव है। और उमा का प्रसंग को आप लोग सभी जानते हो, कितने कितने भाग्यशाली ने वो उमा थी, हिमालय की पुत्री वो सती 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 जो है बाद में हिमालय की पुत्री जन्म। तो जब वो तपस्या कर रही थी पार्वती पर्वत की पुत्री तो ऋषियों ने परीक्षा ली उनकी। वास्तव में परीक्षा से ही व्यक्ति की प्रगति होती है, जहां परीक्षा नहीं है तो वहां प्रगति नहीं है। तो भगवान शंकर ने परीक्षा लेने के लिए उनको भेजा था ऋषियों को, जाकर के कहो क्यों उस नंगे बाबा के पीछे ही पड़ी है, क्या है उनके पास, सब जानते हो ना कोई गाड़ी है, बूढ़ा बैल है सवारी, ना कोई कपड़े है, कपड़े में तो है नहीं, कमर में बागछल और ठंड ठंड से बचने के लिए ऊपर में हाथी छाल। अच्छा बागछल में कोई बटन थोड़ी ना है, उसमें बेल्ट के रूप में सांप है, बाइजन से कहीं कुछ परिस्थिति आ जाए सांप ढीला हो जाए तो महाप्रभु दिगंबर ही हो जाते हैं। तो स्थिति बड़ी खराब है और परिवार में देखिएगा अब ये परिस्थिति हमेशा आने की संभावना है। क्यों, कार्तिकेय जी की सवारी है मोर, और मान लीजिए पुत्र पिता से मिलने आएंगे तो मोर जब आएंगे तो सर्प कहां जाएंगे, नागराज, वो सर्प जाएंगे तो बागछल कहां जाएगा, बागछल भूमिष्ट होगा। इसीलिए परिस्थिति बड़ी खराब है। ऐसे पागल को आप ब्याह करना क्यों चाहती हो, धतूरा खाता है और वैसे भी है उसने जहर पान किया था, उससे उनकी बुद्धि थोड़ी बहुत खराब हो चुकी होगी। अरे भैया लक्ष्मीपति विष्णु को क्यों नहीं तुम प्रण कर लेती हो, उससे ब्याह कर लेते, त्रिलोकीनाथ है, क्षीर सागर में रहते हैं, ऐसी रूम है क्षीर सागर में, बिल्कुल ऐसी है कि नहीं, उनका गर्माहट कहां से आए, बहुत सुंदर है कोमल मुलायम से आए। परंतु उमा सती आड़े आंख तक नहीं देखी, उन्होंने कहा तुमने सत्य कहा, मैं पर्वत पुत्री पार्वती हूं, इसीलिए मेरा दिल कठोर है, पर्वत में कठोरता है, पर्वत में कोमलता नहीं है, मुझ में जो दिल है मेरा जो हृदय ये कठोर है। सत्य कहो शैलराज कुमारी, आपने सही कहा, वरम शंभु ना तो रहो कुमारी, या तो मैं शंभु को वरण करूंगी या तो मैं कुमारी करूंगी। और रुक्मणी ने भी यही पत्र लिखा,
यही अंबुजाक्ष, हे अंबुजाक्ष, हे कमलनयन, यदि आप मेरा पाणी ग्रहण नहीं करते तो व्रत कृच्छान जन्म भी श्याप, हमको 100 जन्म तक तप करना पड़े, हम तप करेंगी पर आपको ही भरेंगे। प्रभु प्रसन्न हो गए। वास्तव में प्रभु को प्राप्ति करने के लिए बहुत समय की आवश्यकता नहीं है, जब सर्वत्र श्रद्धा उनके लिए एक एक चीज है, वो निष्ठा है, दृढ़ संकल्प है, बस उसी से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा जिसके जीवन में लक्ष्य नहीं है वो बहुत समस्या में है, पर जिन्होंने लक्ष्य बना लिया 75% समस्या उसकी अपने आप टल गई। जीवन का आधार होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने कहा सत्य कहो शैलराज कुमारी, भरोसा गुना तो रहे हो कुमारी, जन्म कोटि लागी रबर हमारी, ये जिद्दी है, ये ठान है, हमने ठाना, बस ज्यों ही ठाना तो 50% भगवत साक्षात्कार उसी समय हुआ। ये कोई गणित का हिसाब नहीं है, एक एक भाव है, ठाना तो मिला बस। सबके जीवन में देखो, ध्रुव ने ठाना नहीं हमको नहीं चाहिए, तो ब्रह्मा जी ने बहुत गुणगान किया, हाँ हाँ आपने बहुत अच्छा किया, जय हो ब्रह्मदेव। पिताजी को नमस्कार करके भगवान शिव शंभु कहते हुए कैलाशपुरी जाकर के पहुंच गए श्री नारद जी। वैसे नारद जी को सब स्तोत्र आता है, शिव महिमा स्तोत्र में नारद पारंगत है, बहुत पारंगत है, उन्होंने भगवान शंकर की बड़ी स्तुति कही, हमें तो ज्यादा स्तुति मालूम नहीं है, एक श्लोक मालूम है, गा लेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम नमामि। चंद्रमौलेश्वर काशी में जाओगे तो बहुत सुंदर, वो जब शिव स्तोत्र पाठ करते ना तो मानो तांडव है। भगवान शंकर के जो नृत्य है उनको नृत्य नहीं कहा गया, नृत्य नहीं है, तांडव के समय नृत्य क्या कहेंगे। इसलिए आप जब देखेंगे उसमें कहा नृत्यावसाने, नृत्य नृत्य कृष्ण जो है वो नृत्य करते हैं, ललित गति है, पर जो ढक ढक वो ढक्का बजता है डमर को, उसमें नृत्य क्या होगा, उसमें नृत्य होता है, वो उदंत भाव में करते हैं। इसलिए पाणिनि ने लिखा नृत्यावसान, नृत्यावसान नहीं कहा नृत्यावसाने, ता सीधा दंडा नृत्यावसाने, ये कभी भ्रम में नहीं होना चाहिए। शंकर नृत्य करते हैं, वो नृत्य करते हैं, नृत्यावसाने। पर शंकर ये भी नटवर है, वो भी नटवर है, ये भी दूल है, वो भी, दोनों में भारी भक्ति है। नारद जी ने भूरी भूरी शंकर की प्रशंसा करी है, आप श्री कृष्ण के श्रेष्ठ हो, वास्तव आप ही परम श्रेष्ठ हो, आप ही परम श्रेष्ठ हो, आपकी जय हो, भगवान शिव शंभु की जय, चंद्रमौली भगवान की जय। इस तरह से नारद जी जय जयकार करते हैं, पागल की तरह जाकर पहुंच गए आप साक्षात शिव जी ने कहा रुको 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 नारद जी, आप क्या करना चाहते हो। उनको रोक देते हैं, आप ऐसा क्यों हमारा उपहास करते हो, सब लोग कहते हैं हमारा उपहास, प्रशंसा कोई सुनना नहीं चाहता, केवल अधम मानव अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। हम लोग में ये बहुत भारी बीमारी है प्रशंसा, और खास करके किसी संसार में 2-3 जो वृत्ति वाले हैं, रसोईया वाले बहुत प्रशंसा सुनना चाहेंगे, चाहे रसोईया बाला हो अथवा रसोई वाली हो, वो रसोई में आप दोस्त दिखा देंगे तो सारा दिन खराब हो जाएगा, है कि नहीं। रसोई चाहो उसमें नमक हो जाए मिर्च हो जाए, जय जिंदाबाद, ऐसा है। अच्छा कारीगर भी, कारीगर कोई भी कारीगर अपनी अप्रशंसा सहन नहीं कर सकता। आप देखिएगा और कैसे भी वो नट बोल्ट कर देगा, वो कहेगा हमने सबसे बढ़िया फिटिंग कर दिया है। तो ये हम लोगों में भारी बड़ी बीमारी है, प्रशंसा सुनने के लिए हमारा मन सदैव लालायित रहता है, परंतु ये जो भक्त है, भक्त सदैव अपने प्रशंसा सुनना नहीं चाहता, वो प्रशंसा से दूर भागता है, वो कान बंद कर देता है। तो शंकर शंकर गुस्से में आ गए, बोले बंद करो, ये प्रशंसा हम सुन नहीं सकते। तुरंत जाकर के नारद, ये कहते हैं कि वो शंकर विरासन से कूद पड़े के नारद जी को मुख बंद कर दिए, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। क्योंकि वर्णन नारद जी गाना चालू कर देते, उसकी वीणा वीणा तो कोई बंद नहीं होगी। देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म समुन्नतम मूर्छयित्वा हरि कथा गायमान शराम्य हम। नारद जी दिव्यातिथि का अवतार है, नारद जी का कभी प्रसंग सुनो, उसमें भारी प्रेरणा मिलेगी। ऐसे जैसे नारद नहीं बने, नारद जी जो आज नारद हमारे सामने है, उनको बनने में काफी साल लग गए, काफी करोड़ साल लग गए। उनको जो वीणा मिली, उसकी वो कुर्म पुराण लिंग पुराण आदि में इसका वर्णन है, थोड़ा सा हम कह देते एक पांच मिनट दो मिनट। नारद जी एक बार एक महफिल वैकुंठ में हुई, संगीत का आसर जिसको कहते हैं, बड़े बड़े गवैया सुबह है। गवैया हमारे शास्त्र में कैसे हैं, हा हा हो हो, ये सब गवैया है जो गंधर्व है, इनका जो नाम है हा हा हो हो है, और ज्यादा राग आलाप्त है इसलिए हा हा नाम कर दिया है, और कोई हो हो भी है वो हाला करने वाले हैं, तो इनका नाम हा हा हो है। तो नारद जी भी आए थे, भाई इस जो राग आलाप होगा ये संगीत महफिल में हम भी भाग ले। तो माँ भगवती लक्ष्मी वहां पधारी, तो उसने देखा नारद जी, उन्हें पूछा आप यहाँ क्या कर रहे। तो माँ अब ये जो संगीत का असर है, हम इसमें थोड़ा आ गए आनंद रोकने के लिए, तुमको गाना वाना कुछ नहीं आता, तुमको यहाँ क्या करना है, जाकर राम राम करो, भजन करो, यहाँ कोई गावा नहीं है। अरे हम गा नहीं सकते, मतलब सुन भी नहीं सकते, बड़ी उल्टी बात है। तो नारद जी को बड़ा क्रोध आया, बड़ा क्रोध। वास्तव में क्या है, श्री कृष्ण की यही इच्छा थी, उनका मानव सत्ता है ना नारद जी, तो श्री कृष्ण चाहते थे कि नारद संगीत विद्या में सबसे श्रेष्ठ हो जाए, इसलिए लक्ष्मी के माध्यम से लीला रची। क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति को अपमान नहीं होता तो उसके जीवन में प्रगति नहीं होता। अरे नारद जी कहते हैं भैया हम राम राम करते ठीक है, गा नहीं सकते, बजा नहीं सकते, इसका मतलब सुन भी नहीं सकते, आप ऐसा क्यों कहते हो। तो उन्होंने उसी दिन ठाना, हमको विश्व के नहीं, इस संसार समूचे संसार के सबसे उच्चतम गवैया बनना है, हम उच्चतम गायक बनेंगे। इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा मद भक्त दृढ़ निश्चय, करेंगे तो करेंगे, वो पीछे नहीं हटता। तो वो तो लंबा प्रसंग, उन्होंने कई गुरुओं के पास गए, अंततः उस संगीत महफिल में एक बार फिर ठाकुर जी ने व्यवस्था कराई, नारद जी आए। तो इतना बढ़िया विलंबित राग से गाने लगे श्री नारद जी, तो प्रभु ने कहा अब इनको उपहार देने के लिए क्या है, मेरे पास तो कुछ है नहीं, लक्ष्मी जी के पास एक वीणा है। बोले माता जी वो वीणा लेकर के आओ। तो लक्ष्मी जी साक्षात वो वीणा लेकर के आई और वही वीणा को ठाकुर जी दोनों टिका नारद जी को, इसीलिए प्रथम स्कंद भागवत में आया है देवदत्ता वीणा। ये देवदत्ता है, साक्षात श्री नारायण के द्वारा दत्त है। जब नारद जी गाना चालू करते हैं, वादन चालू करते हैं, फिर संसार में कोई उनका मुकाबला नहीं करता, तब पूरे संसार में उस नारायण ने घोषित कर दिया श्रेष्ठ गायक कलाकार है श्री नारद जी। श्री नारद जी महाराज की जय। तो ऐसे जब गा रहे थे तो भगवान शंकर जाकर उनका मुख बंद कर दिया, क्यों गाते हो, क्यों क्यों इतने प्रशंसा करते हो आप हमारे, क्या आप नहीं जानते हमारे अवगुण को, बहुत सारे अवगुण है, अरे हम कैसे कृपा पात्र है, क्या कृपा हम पर है। यदि हम कृपा के पात्र होते तो क्या हम बाणासुर के उस प्रसंग में हम अपने प्रभु के साथ लड़ते, कभी नहीं लड़ते। हाँ उन्होंने हमारा रक्षा करी, बहुत बार रक्षा करी, उन्होंने डांटा नहीं है, लेकिन हम भी तो बहुत दूसरों को वरदान दिए। ऐसे नारद जी बहुत बहुत प्रसंग कहते हैं, आप लोग देख लेना, पढ़ लेना, उसमें कई प्रसंग में केवल हिंट कर देता हूं कि श्री शंकर वास्तव में कृष्ण भक्तों को बड़े प्रेम करते हैं, और उनसे जितने लोग प्रेम करते हैं कृष्ण के भक्त नहीं है उनसे वो प्रेम नहीं करते। इनके दो दृष्टांत है, काशीराज के पुत्र है सुदक्षिण और एक है जयद्रथ। यद्यपि ये शंकर के भक्त है परंतु उन्होंने उन पर ठीक से कृपा नहीं करी, परंतु जो श्री कृष्ण के भक्त है जब ये शंकर की निंदा भी करते हैं, वैसे तो निंदा करना करनी ही नहीं चाहिए, यदि उनकी ना समझी के कारण कर भी देते हैं फिर भी शंकर प्रसन्न, तब उनकी प्रसन्नता खत्म नहीं होती, ठाकुर प्रेम करते हैं भगवान शंकर। उसके लिए दृष्टांत है चित्रकेतु। चित्रकेतु ने भरी सभा में निंदा कर दी, अरे भैया सामान्य मानव भी अपनी पत्नी को लेकर के धर्म सभा में नहीं बैठता, ये बैठ गए, भारी निंदा है ये। परंतु प्रभु ने जब पार्वती जी ने देवी जी ने श्राप दिया, प्रभु ने कहा आहा तुम नहीं जानते हो इनकी कितने महिमा है, नारायण पास दर्शन मिले क्यों तुम श्राप देते हो, वो रोका। और प्राचेतस को देखो, दस प्रचेता, वो विष्णु भजन करने के लिए जा रहे थे, साक्षात शंकर आकर के उनको वरदान दे दिए, जाओ नारायण सरोवर में जाओ तप करो। परंतु विपरीत केस में देखिएगा, सुदक्षिण और जयद्रथ, यद्यपि इन दोनों ने भरी तपस्या करी परंतु शंकर जी ने क्या वरदान दे दिया, अद्भुत वरदान दे दिया। आप पढ़िएगा भागवतम, जयद्रथ को दे दिया ठीक है तुम एक बार जीतोगे फिर अर्जुन के बिना, अर्जुन को तुम जीत नहीं सकते हो, एक बार तुम जीत सकते हो पांडवों को, इसलिए भीम को हरा देता एक बार, ये घटना आप जानते हो। और जब काशीराज का मित्र पौंड्रक, वो श्री कृष्ण के साथ द्वेष किया था और उसके साथ काशीराज भी आया था, तो काशीराज के गर्दन को उड़ा करके ठाकुर जी ने ऐसा भेजा उस क्लाइड में, वो जाकर के ठीक उसके राजधानी में दरबार में उसके पुत्र के पास ही गिरा, उसके पुत्र का नाम था सुदक्षिण, तो वो तो गुस्से से तिलमिला उठा, उन्होंने कहा हमको बदला लेना है, तो उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा, तो उन्होंने कहा शंकर की आराधना करो ये तुम्हारे इष्ट है, तो शंकर ने कहा ये क्या आराधना, हमने हम इस बारे में कुछ नहीं जानते, तुम दक्षिण आदि का अभिचार करो उससे तुमको वरदान मिलेगा, पर एक शब्द पे, क्या है, यदि तू ब्राह्मणों के भक्त पर प्रयोग करोगे वो तुम्हारा अभिष्ट कर देगा, यदि तुम ब्राह्मणों के अभक्त पर प्रयोग करोगे तो वो काम करेगा। पर वो भी तो गुस्से वाला था, अंधा था, उनको पता नहीं है कि नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण ब्राह्मणों के भक्त है, श्री कृष्ण ब्राह्मणों के भक्त है, सुदामा भी प्रवृत्त जाते हैं और पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैन के जलसों पगत हुए, ऐसे सुदामा का स्वागत होता है। सुदामा ने देखा ये ब्राह्मण देव है, ये ब्राह्मण देव है, चातुर्मास व्रत पालन करने में दुर्वासा ने कहा हम तुम्हारे कौन है ऐसा हिम्मत वाला व्यक्ति जो हमको चार महीना घटक गए, जब दुर्वासा ने घोषणा कर दी सब पीछे हट गए, महाराज कोई नहीं आया, श्री कृष्ण का आओ महाराज हम करते रहो चार महीने तक, जब चार महीना पूरा होता है तो दुर्वासा ने कहा थोड़ा हमको आज घूमना है, थोड़ा टहलना है, जाना है सर पर्यटन में, कैसे जाओगे महाराज वक्त तैयार है ना, घोड़े खींचने वाले वक्त में हम नहीं जाएंगे, कैसे जाओगे इंसान खींचता हो, उस समय ठाकुर जी मानव रूप में थे, बोले तुमको तुमको खींचना पड़ेगा और एक तरफ रुक्मणी रहेंगे एक तरफ तुम रहोगे। ठाकुर जी ने कहा मंजूर है। अद्भुत चरित्र आप लोग हरिवंश पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है कि रुक्मणी एक तरफ रुक्मणी और एक तरफ हमारे प्रभु, वो तो लंबा प्रश्न है। तो ब्राह्मण देव कहां तक सेवा करते हैं, कोई ऐसा संसार में है, द्वारकाधीश है और दुर्वासा के रथ खींच रहे हैं और वो नहीं खींच रहे, वो रुक नहीं, जो लक्ष्मी है जगदम्बा है वो सारे संपत्ति का अधिष्ठात्री देवी है, वो भी खींच रही थी। ये विचित्रता, ये ब्राह्मण देव है। तो दक्षिणाग्नि में अभिचार करने से वो कृत्या उत्पन्न हो गई। सुदर्शन ने कहा मेरा जो पितृहंता है उस पर चढ़ाई कर दो, उसकी हत्या कर दो। तो कृत्या जब जाती है तो उन्होंने देखा ब्राह्मण देव, तो फिर वही कृत्या उल्टा आकर के काशी को ध्वंस कर देती है, काशी नगरी तब खत्म हो गई। तो अपने पाप से को नष्ट हो गया। तो इसी को नारद जी कहते हैं ये जो भगवान शंकर है वो उनका कपट वरदान है। कपट वरदान है कि नहीं, परंतु उनके जो भक्त श्री नारायण के भक्त उन पर तो सच्चा वरदान है और उनके दोषों को देखते नहीं, ऐसे गुणगान करते हैं। फिर भी शंकर अपने आप में बिल्कुल संतुष्ट नहीं, कहते नहीं हम पर जरा सी कृपा नहीं है नारद, ये सब तुम गलत कह रहे हो। नारद जी कहते हैं नहीं नहीं आपकी रक्षा हुई थी वृकासुर के प्रसंग में, हाँ वृकासुर के पास जब वृकासुर आपको मारने के लिए आया था पर आपकी रक्षा हुई उससे कृपा है। शंकर जी कहते हैं नहीं वो तो उदार व्यक्ति है, वो तो उदार व्यक्ति है, वो ऐसे रक्षा करते हैं। वृकासुर के प्रसंग आपको जानते हम बढ़ाने जानते ही नहीं। एक बार शकुनी पुत्र वृकासुर तो वो केदारनाथ जाकर के तप करने लगे, हमको भी अजर अमर बनना है। तो क्या कैसे अजर अमर बनोगे? तो शंकर उन्होंने श्री नारद जी से पूछा जल्दी प्रसन्न कौन हो जाएंगे, हमको जल्दी फल चाहिए। नारद जी ने कहा आशुतोष भगवान की पूजा कर जाओ केदारनाथ। तो अपने शरीर से मांस काट काट करके जब हवन कर रहे थे तो भगवान शंकर प्रकट हो, उनका वरदान मांगो। महाराज यदि आप हम पर प्रसन्न है मुझे यही वरदान दे दो, जिसके माथे पर हाथ रहूंगा उसका माथा टूट जाएगा। ऐसे ही असुरों का वरदान है, मांग है। तो शंकर कहे तो था वैसा ही हो। तो दुष्ट इतना दुष्ट था उसने कहा ये वरदान दिया अब इसकी परीक्षा हम कहां पे करेंगे। और सबसे उचित पात्र तो यही है। ये द्वेष करने वाले ये जो लोग हैं, जहां पे खाते हैं ना वहीं पर छेड़ते हैं, दूसरा भी लाभ मिलेगा। इनकी वाम भाग में जो परम रूपश्री तरुणी बैठी है शंकर इसके लिए बिल्कुल नालायक है। अरे हम तो इतने बड़े सुंदर शरीर वाले हैं, राक्षस है हमारे में बलवीर्य है सब, ये नवधर्म होता है क्या है, इनके लिए सर्वसंख्या अयोग्य है। तो एक पंथ दो काज है, इनको मार दूंगा और पार्वती को ले जाऊंगा। यूं कहता हुआ उसके पीछे भागा असुर। प्रभु को क्या पता था कि अब यही आने वाला है, प्रभु को शुद्ध नहीं रहा, वो बेचारे भागे 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 जा रहे थे, वो श्वास फूल रहा था। तो प्रभु वहां से बालक रूप से आ रहे थे, बाबा कहां जा रहे, नहीं देखो पीछे दुष्ट आ रहा है, कोई बात नहीं इस पेड़ के पीछे रह जाओ हम देखते हैं। और जिनकी वाणी से जिनका नाम है मोहन, हाँ जिनका नाम है मोहन, सबको मोहित कर देता है मोहन इति मोहन। तो उनके वाणी से क्या चले, किसकी चले? उन्होंने कहा आप पागल हो गए हो क्या, क्या हो गया आपको? अरे असुर लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, क्या आपको पता नहीं जब से इन्होंने जहर पान कर दिया ना इनके बुद्धि ठिकाने पे नहीं, आप क्यों इनके बातों पर प्रतीत करते हो? अब मोहक वाणी जब इन्होंने सुनी, सही बात है बिल्कुल उचित है, इनका अपना हिसाब किताब नहीं है, हमें क्या वरदान देगा? और इनके पास वरदान देने की क्षमता होती ये बूढ़ा बैल पर चलता तो अपने लिए कम से कम कुछ ना कुछ कर देता। सोच में पड़ गया, क्या सोच रहे हो? अरे अपना मस्तक है ना अपने पास, हाथ रख लो, पर क्या हो जाएगा, कुछ होगा कुछ होगा ना, ऐसा तो नहीं कहा तो असत्य हो जाएगा, अपने माथे पर हाथ रख लो ना, क्या दिक्कत है? तो जो वही प्रभु ने कहा तो वृकासुर ने अपने मस्तक पर हाथ रखा तो मस्तक उसका फट गया तो शंकर बेचारे श्वास राहत लेकर के सामने आगे दंडवत प्रणाम किए, प्रभु जी आपने भारी विपत्ति से बचा लिया, नहीं तो हमारा पत्नी का अपहरण हो जाता, वो लेकर चल देता यहाँ से। तो प्रभु ने अब यहाँ कहा गया है, प्रभु कहते हैं नहीं नहीं वो तो अपने पाप से ही मारा गया, हमने क्या रक्षा करी। कितने उदार चित्त वास्तव में, कैसी वैष्णव वास्तव में श्री कृष्ण ठाकुर वो अपनी वैष्णवता सिखा रहे हैं। बोले वो मैंने रक्षा नहीं की, वो तो वो असुर अपने पाप से ही मारा गया, आप क्यों चिंता करते हो, ऐसी कोई बात नहीं, आप जाइएगा। और कहां तक कहे, परशुराम जी के रूप में, राम जी के रूप में शंकर की आराधना करते हैं, कितने प्रिय है शंकर, रामेश्वर आज भी विराजमान है। तो यानी कि शंकर जी निश्चित रूप से प्रिय पात्र है, इसमें जरा से भी कोई शंका नहीं है। पर फिर भी शंकर कहते हैं नहीं नहीं हम उनके प्रिय पात्र नहीं है, क्योंकि उन्होंने बारह सोता हुआ उपाध्याय कहा। बोले ये सब हमारे पर कृपा नहीं, कई सारे प्रसंग है, बहुत लंबा चलेगा। बोले नहीं ये कोई कृपा नहीं है, हमने उनके साथ लड़ा, बहुत कुछ देश किया, बहुत कुछ किया, ये हम पर कृपा हम नहीं मानते। तो फिर कौन कृपा है, कौन कृपा के भाजन है? नहीं, आप वैकुंठ लोक में जाओ, वैकुंठ के लोग सभी भक्त हैं, वो कृपा के भाजन है, आप वहां चले जाओ। और उसी समय पार्वती जी आ जाती है, पार्वती जी कहती है लक्ष्मी जी भी बड़ी कृपा करने वाली है, वो भी साक्षात श्री जो लक्ष्मी जी, वो वास्तव में श्री कृष्ण की प्रिया है, वो भक्ति करती है, आप उन्हीं के पास चले जाओ। दुर्गा श्री पार्वती जी लक्ष्मी जी की प्रशंसा करती है, और श्री क्या नाम है शिव जी वैकुंठ लोक की प्रशंसा करते हैं। सिर्फ पार्वती कहती है देखो ये जो श्री जी है ना, ये श्री कृष्ण की इतनी प्रेमिका है, इतनी प्रेमिका है, इतनी प्रिया है, वो अपने वैकुंठ छोड़कर के यहाँ तप कर रही है। सा श्री स्वासरम अरविंद वनम च विहाय यतपाद सौभग मलम रज प्रपन्ना, तपस्या कर रही है, आप वहां चले जाओ। तो नारद जी तुरंत वीणा वादन करके वैकुंठ जाने के लिए तैयार हो गए, परंतु शिव जी ने उनको रोक दिया, कहां जा रहे हो महाराज, इतनी जल्दी है? नारद जी ने कहा आपने तो कहा ना, नहीं नहीं एक बात सुनिएगा। नारद जी कहा कहो, नहीं नहीं अपना कान मेरे पास लाओ, ऐसा उसमें लिखा गया है कि नारद जी अपने कान को लेकर आते हैं भगवान शंकर के पास, कहते हैं सुनो वैकुंठ लोग तो है ही है, परंतु उनसे भी श्री कृष्ण के परम प्रेष्ठ भक्त है, वो है श्री प्रहलाद महाराज, वो सूतल लोक में रहते हैं, आप उनके पास चले जाओ, वो पूर्ण कृपा के पात्र है, वहां से आपको पता चलेगा कि कैसी भक्ति है। देखो नारद जी हैं गुरु और प्रहलाद जी हैं शिष्य, लेकिन शिव कह रहे हैं वो वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है उनकी भक्ति, आप वहां चले जाओ, वहां आपको पता चलेगा कि प्रहलाद कितने कृपा के पात्र हैं। तो श्री नारद जी परम प्रसन्न होकर के भगवान शंकर को प्रणाम करके वहां से सूतल लोक के लिए चलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से हम बहुत संक्षिप्त में कहें, आप लोग देख लेना, इसमें बड़ा आनंद आएगा। विस्तार रूप से आप इसका अध्ययन करेंगे तो कई सारी शंकाएं हैं जो समाधान हो जाएगी, पर इतना समय नहीं है। अब हमारी पद्धति के अनुसार चलेंगे तो एक एक श्लोक के लिए जब एक घंटा चलता है तो पूरे अध्याय को हम कैसे कह देंगे, और उसमें भी कई चरित्र हैं, कई उपाख्यान हैं, तो बहुत संक्षिप्त, बहुत माने बहुत 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 संक्षिप्त से हम चल रहे हैं, केवल छू छू करके चल रहे हैं। तो श्री नारद जी जाकर के पहुंच जाते हैं सूत्र लोक में, जाते समय शंकर जी ने उनको सावधान कराया था। देखो टाइम कितना हुआ, 9:30 10 मिनट हो चुका है, नहीं, मैंने ये इस प्रश्न को 10 मिनट में कह दूंगा, क्योंकि कल 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 और दो दिव्य प्रसंग है। तो श्री नारद जी ऐसे फटाफट चलते हैं। श्री नारद जी मन जान में आरूढ़ हो गए। आगे आगे श्री नारद जी मन रूपी जान में आरूढ़ होकर के सुतल लोक में प्रहलाद जी के दर्शनार्थ पहुंचे। तो भगवान शंकर ने कहा था, देखो जाओगे पर प्रहलाद जी को नमस्कार नहीं करने का, वो इतने विनयी है, वो नमस्कार तक ग्रहण नहीं कर सकते, और हमारा आलिंगन कह देना और आप ही आलिंगन कर देना। तो नारद जी जाकर के पहुंच जाते हैं सुतल लोक में। जाकर के देखते हैं प्रहलाद जी महा ध्यान में व्यस्त है, दोनों नेत्रों से प्रेमासु झर 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 रही थी। तो ध्यान में अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो रहे थे। तब नारद जी जब जाकर के पहुंचे, प्रहलाद जी ने दर्शन किया, उठ करके प्रणाम किया। नारद जी गुरु के रूप में उनका आलिंगन करते हैं। आप ही श्री कृष्ण के कृपा पात्र है, आप ही श्री कृष्ण के कृपा पात्र है, कहकर के उनको उनकी प्रशंसा करते हैं। कहने है प्रहलाद, बचपन से बालकपन से आपके पिता ने आपके साथ द्रोह किया था, सड़कों से डसवाया, सागर में फेंकवा दिया, बहुत कुछ क्या नहीं किया था, सब वर्णन किया गया है, परंतु आपने एक बार भी आपत्ति नहीं करी। आपके जुआ सदैव नारायण मंत्र जप करती रही, इसीलिए आप श्री कृष्ण के परम कृपा पात्र है, आप श्री कृष्ण के परम कृपा पात्र है। आपने नैमिषा अरण्य में श्रीहरि के साथ एक बार लड़ा था, ये प्रश्न वामन पुराण का है, इसमें कहा गया है कि एक बार श्री प्रहलाद महाराज, ये नया है इसलिए हम पूरा कह देते हैं, श्री प्रहलाद एक बार श्री भगवान को दर्शन करने के लिए नैमिषारण्य जा रहे थे। तो रास्ते में एक तपस्वी मिला और उस तपस्वी के हाथ में धनुष बाण थे। तो प्रहलाद ने सोचा, है तो ये तपस्वी पर इनके विपरीत इनकी सजावट है, तपस्वियों को तो कमंडल रखना चाहिए पर इनके हाथ में बाण है धनुष है, तो उनके साथ उन्होंने लड़ा। पर लड़ाई में वो कोई सामान्य थोड़े थे, वो साक्षात श्री नारायण थे। तो दूसरे दिन ये पराजित होकर जब गए, तो जाकर के जैसे कहते हैं ना, भक्त कहाँ जाएगा, ये एक उर्दू में कहते हैं मुल्ला कहाँ तक जाता है, मुल्ला की दौड़ ज्यादा से ज्यादा मस्जिद तक है। तो प्रहलाद के इष्ट अपने साथ रहते हैं, तो प्रहलाद जी आकर के रो पड़े, प्रभु भारी बेइज्जत है, प्रभु ये भारी बेइज्जत है, जिस भक्त ने उनकी शरण ले ली है, अब उस भक्त की बेइज्जत उस प्रभु की बेइज्जत मानी जाती है। ए हो मुरारी पुकारी कहो, या में मेरी हंसी नाई तेरी हंसी है, ते मुरारी, इसमें पुकार करके कहता हूं, यदि मेरी रक्षा नहीं होगी, या में मेरी हंसी नाई तेरी हंसी है, अब मेरी रक्षा तो होनी चाहिए। तो इष्ट को जब पूजा करके माला डाल के गए, तो वहां देखा कि वो जो व्यक्ति खड़े थे, वो तो शारीरिक जो माला अपने इष्ट में डाले थे ना, वो माला वहीं उनके गले पे शोभायमान हो रही थी। तो साक्षात लंबी दंडवत करी, तो प्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया, बोला सदैव मैं तुमसे सदा पराजित रहूंगा। नारायण ने उनको वरदान दे दिया। वास्तव में भक्तों से सदैव हरि पराजित रहते हैं, ये उनका स्वभाव है, ये उनकी शोभा है, ये स्वभाव भी है, शोभा है। तो प्रहलाद जी की ऐसे बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं, तो प्रहलाद जी एक एक बात को टाल देते हैं। सबसे पहली बात दो बात हम मुख्य बताते हैं, तो टाल देते हैं। देखो नारद जी, हे गुरुदेव, आपने जो कहा विचार करके नहीं कहा, क्या एक तो बालकपन में विष्णु भक्ति होती नहीं है, बालकपन में अब मैं गर्भ में था, आपने मुझे शिक्षा दी, ये क्या कृष्ण भक्ति है, ना मैंने दीक्षा ली, ना मेरा संस्कार हुआ, ना मैंने कहीं वेद पाठ किया, ये कोई भक्ति भक्ति है नहीं। परंतु प्रहलाद जी ने ये जो बात कही, ये उनकी दीनता है। देखो शास्त्र जो वचन है, कभी कभी हमको सटीक निर्णय करने के लिए उन पर प्रवेश करना पड़ेगा, आचार्यों के माध्यम से जाना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने कई बातें ऐसे कही थी भागवत में जो झूठ है। एक दृष्टांत हम देते हैं, जब रुक्मणी के साथ हास प्रयास करते हैं, तो प्रभु कहते हैं अयम ही परम लाभ, गृहस्थी को लिए, गृहस्थियों के लिए पत्नी के साथ हास प्रयास करना यही जीवन का परम लाभ है। अयम ही परम लाभ, ये वाक्य शायद दो तीन बार भागवत में आया है। अयम ही, सुदामा कहता है अयम ही परम लाभ, और मार्कंडेय कहते वहां मार्कंडेय के प्रश्न में भगवान शंकर कहते हैं अयम ही परमलाभो, और श्री साक्षात श्री कहते हैं अयम ही परमलाभो। अरे पत्नी के साथ हाथ प्रयास करना क्या परम लाभ है, वहां दो दो, दो सेकंड में दो दुखते पड़ेंगे ये क्या परम लाभ है। वो तो विनोद के लिए कह दिया, इन्हें विनोद के लिए कह दिया इस तरह से। और इसी को कोई परम लाभ मान ले वो तो घाटे में जाएगा। बल्कि परम लाभ जो भक्त कहता है वही है, सुदामा कहता है कि अयम ही परम लाभ हो। हाँ, हरि का दर्शन करना ये जीवन का परम लाभ है। मार्कंडेय जी के पास शंकर कहते हैं भक्तों का दर्शन करना ये जीवन का परम लाभ है। अब पत्नी के साथ हाथ पर प्रयास करना ये थोड़े ना परम लाभ है, क्या परम लाभ है ये तो माया की माया, ये माया के तो क्या कहते हैं चाल ही कहते हैं, बुद्धि हरी गई। तो भागवत का ये विचार है। तो प्रहलाद महाराज जी जब कहते हैं बचपन में क्या हम भक्ति करेंगे, ये उनकी दीनता है। भक्ति तो कोई भी व्यक्ति किसी भी समय कर सकता है कि नहीं। एतावत एव जिज्ञासम, है ना, एतावत एव जिज्ञासम क्या है, तत्व जिज्ञासुना मुना अन्मय व्यतिरेकाव्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। वहां पर देश काल का कोई नियम नहीं, काल ये 5 साल का बालक है, बालक को पंचायन ऐसा कोई नियम नहीं है कि उनको नहीं आएगा। प्रहलाद कहते हैं नहीं। प्रहलाद जी बोले हे भगवान हे गुरुदेव, आप ये सब बातों को स्वयं विचार करें, बाल्यकाल में श्री कृष्ण भक्ति का ज्ञान भी अच्छे तरह से नहीं हो सकती है, ये झूठ बात है, ये उनकी दीनता है। यत्स्यात् सर्वदा, यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, सभी काल में हो सकता है, सभी समय में हो सकता है। बालक कर सकता है, बूढ़ा कर सकता है, जुगनी कर सकता है, युवक कर सकता है, कुत्ता कर सकता है, बिल्ली कर सकती है। हाँ, कृष्ण कहीं प्रभु वो गरी जो फेली दे लो, हाँ वो गरी खाया कुकुर नाचते लागेगा, वो कुकुर जो है वो नारियल गरी को खा करके कृष्ण कृष्ण कह करके नाचने लगा, तो कुत्ता कर सकता है कृष्ण भक्ति। इसलिए प्रहलाद जी की विनम्रता है। तो वो कहते हैं हम कृष्ण कृपा के पात्र नहीं है। और दूसरी बात है, हमने जो असुरों को ज्ञान उपदेश दिया है वो भक्ति का उपदेश तो बहुत कम दिया है, उसमें ज्ञान फर्क है। वो कहते हैं ये मैंने ज्ञान फर्क उनको उपदेश दिया है, ये आत्मा है ये अनात्मा है, लेती मार का उपदेश दिया है, भक्ति क्या दिया मैंने। इसलिए प्रहलाद की भक्ति को इसमें ज्ञान मिश्रा माना गया है, प्रधान भूता भक्ति माना गया, केवल नहीं माना गया। और जहां तक बात है, तुम कह आप कहते हो कि हम पर कृपा है भैया, तो प्रभु गुरुदेव हम क्या भक्ति करते हैं, हम तो स्मरणांग मात्र करते हैं, स्मरणांग कोई भक्ति थोड़ी ना है। अगर प्रैक्टिकल हम वास्तव में सोचे कि हमें कोई स्मरण करिए थोड़ी ना भक्ति है, पानी गिलास ला के दे दें, कहीं एक कोई चॉकलेट भी दे दे, एक फूल दे दे, श्री कृष्ण ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जल ग्लास भी दे देना, सेवा करना ये भक्ति है, स्मरण करना क्या भक्ति है, कोई भक्ति नहीं है। ऐसा नहीं कि भक्ति नहीं है ऐसा अच्छा ये भी एक बात है, वास्तव में भक्ति इसलिए है कि कृष्ण उदार है, वरना स्मरण कोई भक्ति नहीं है। क्या भक्ति है, चुपचाप बैठ करके हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत, हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण नाम, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन ये भक्ति क्या है। भक्ति की परिभाषा जो जानते हैं, भक्ति निष्पन्न किससे होता है, भज धातु से, भज भज सेवायाम, भज सेवायाम पाणिनि ने कहा, भज भज माने सेवा, भज सेवायाम। तो जहां पर सेवा नहीं है वो भक्ति नहीं है। ये तो श्री कृष्ण बड़े उदार है, उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारा स्मरण भी मेरी सेवा है, क्योंकि ठाकुर पूर्ण है इसलिए उनका स्मरण भी पूर्ण है, ये तो उनकी कृपा है। तो प्रहलाद जी कहते हम क्या सेवक है, हनुमान उनके सेवक है। कितने बारीकी विचार है, एक वैष्णव कहां तक विचार। खैर नौदा भक्ति में कहा गया है सगणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, पर एक बढ़कर के बलि महाराज सर्वोच्च रूप से माने गए समर्पण, क्योंकि इस शरीर को, हाँ ये एक व्याकरण का सूत्र आया, ये अधिकरण हो गया, और इसी को आधार बना करके मन रहता है, इसी को आधार बना करके वाणी रहती है। जो तीन क्रियाएं हैं मनसा वचसा और कर्मणा, तो चाहे कर्म करो चाहे मन से सोचो चाहे वाणी से, ये तीनों का आधार है ये शरीर है। तो जब व्यक्ति शरीर को समर्पण करता है तो वो भक्ति है, बस सेवाया। तो प्रहलाद जी कहते हैं चुपचाप बैठ करके निहत्था बैठ करके हरी 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 बोलते हैं, ये क्या भक्ति है? इसमें कोई भक्ति नहीं। आप जाओ किंग पुरुष वर्ष में श्री हनुमान जी है तो वहां पधारो, वो बड़े भक्त है, आपको पता चलेगा कि किस तरह से हनुमान जी भक्ति करते हैं। एक एक करके वो नकार करके हनुमान जी के पास उनको भेज देते हैं पांच करके। हाँ, तो वो जाकर के श्री नारद जी किंग पुरुष वर्ष में पहुंच जाते हैं, देखते हैं कि श्री राघवेंद्र सरकार विराजमान है, उनकी पूजा अर्चना बहुत धूमधाम से चल रही है। तो हनुमान उछल कूद होकर कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन की तीन पद्धतियां हैं, एक है शुकवत, एक है नारदवत, एक है हनुमतवत। देखो शुक जिस तरह से कीर्तन करते हैं जैसे हम कह रहे हैं, ये शुकवत। नारद जी में बहुत राग ताल है, वो विलंब राग आदि गा करके करते हैं, पर हनुमान का कीर्तन ऐसा नहीं है, उछल उछल करके करते हैं, कभी यहाँ बैठते हैं, कभी एक 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 छलांग लगाई तो लंका चले गए, क्या फर्क पड़ता है उनको। तो हमेशा उछलते हैं, श्री राम कह करके यहाँ मान लीजिए श्री राम उच्चारण किए ना, फिर वो मंदिर के पास देखोगे उनको, फिर वहां से श्री राम कहेंगे यहाँ है। तो श्री नारद जी जब जाकर के कहते हैं जानकी वल्लभ श्री रामचंद्र की, बस इस समय ये आवाज जब हनुमान के कान में पहुंची वहां से छलांग लगाए श्री नारद जी के पास आकर गिरे, हम कृपा के पात्र नहीं है। दोनों वास्तव में दोनों को पकड़ लिए, वो आलिंगन की मुद्रा वो भाव वो दोनों ही जाने, सनातन को क्या प्रसन्नता, चैतन्य महाप्रभु क्या प्रसन्नता, वो दोनों जाने। उद्धव तुम जानो या तुझे हम जाने या तो वो जाने, और कोई नहीं जानता। इसीलिए इस आनंद का नाम नारद ने नारद भक्त सूत्र में लिखा मोका सदनबत, रसगुल्ला किसी घूंगे को दे दो खाएगा कैसे लगता है, वो आंखों से ऐसे कहेगा बहुत अच्छा है, लेकिन कह नहीं सकता है मुका स्वागत पर। तो हनुमान छलक लगा करके आ जाते हैं, हनुमान कहते हैं बिल्कुल हम कृपा के पात्र नहीं है, आपने ऐसे कह दिया हम कृपा, बहुत लंबी कथा, हमको केवल छूते हैं, हम कृपा के पात्र नहीं है। हनुमान जी का प्रश्न तो आप लोग सब जानते हो, बाल्यकाल से प्रबल तपस्वी प्रबल तेजस्वी है। प्रहलाद जी कहते हैं हाँ आप हाँ, प्रहलाद जी जब उनको भेजा था वो कहता देखो हनुमान नष्टिक ब्रह्मचारी है, हमको गृहस्थी है, उनके पास चले जाओ, तो बढ़िया गाना करते हैं और वही वही सिखाएंगे। तो वो आकर के वही सब देखते हैं, क्योंकि वो बचपन में सूर्य को पकड़ने गए थे, हाँ जब बेहोश हो गए थे, फिर वरुण देव को उनके जो पिताजी वायुदेव ने सबकी सांस रोक ली थी, इसलिए देवताओं ने उनको वरदान दिया था अजर अमर है। तो अजर अमर होकर के सदा राम जी का गुणगान करते हैं। वहां पहुंच गए हनुमान जी, जो लंका गए थे, लंका में उनके साथ उनका विभीषण के साथ मुलाकात होती है, ये प्रसंग जानते हैं विभीषण के साथ। तो विभीषण जब शैया त्याग करता है और आपस में एक परिचय होता है, यही सब हठी करी हो पहचानी साधु ते होए ना कार जहानी, राम राम विभीषण की ना हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा, वो जान लिया कि ये सज्जन है, इनके साथ परिचय करना बहुत अच्छी बात होगी। उस समय विभीषण भी अपन में संतोष नहीं थे भक्ति में। विभीषण कहते हैं अब मोही भाव भरोसो हनुमंता, अब मोही भाव भरोसो हनुमंता, बिनु हारे कृपा मिल हिन संता, बिनु हारे कृपा मिल हिन संता। संत तो मिल गए परंतु हमारे में कमी क्या है, विभीषण कहते हैं तामस तन कछ साधन नाही, प्रीति न पद सर जुर्म न माही, एक तो हम असुर है, हमारे में भक्ति कहां से आई, जबकि विभीषण सख्य रस के हैं। वो कहते हैं हम असुर जो निकाले हैं, तामसी जो निकाले, हमें काम बख दिया। पर उनके वाक्य को सुनकर के हनुमान जी कहते हैं, सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करई सदा सेवक पर प्रीति। और तुम तो अपने को तामस कहते हो, मेरी स्थिति जानते हो, मैं कौन हूं? मैं बामर हूं। अरे तुम तो असुर हो, वो तो अच्छी बात है, असुर तो मानवों से श्रेष्ठ होते हैं। असुर जुनिया मानव जुनि से श्रेष्ठ है, वो तो देवताओं के भाई लगते हैं, आसपास के लोग हैं। मानव तो केवल पशु स्तर से थोड़ा सा उत्कृष्ट है, बहुत उच्च कोटि के, उच्च उच्च धरातल पर है। तो हनुमान जी कहते हैं आप जरा मेरी स्थिति तो विचार करो। कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबई विधि हीना। एक तो मैं बानर हूं, मैं कौन सा कुलीन? अरे तुम तो कुलीन वंश के, तुम विश्वानंदन हो, ब्राह्मण हो तुम, हमारे में क्या है? जो मेरा नाम लेता है ना, उनको भोजन दिन भर नहीं मिलता। लेकिन ऐसे प्रभु हमें अपनाते हैं, ये प्रभु की बड़ी कृपा है, ये प्रभु की बड़ी कृपा है। तो विभीषण और हनुमान में भी ये वार्तालाप होता है। वहां यद्यपि बृहद भागवत अमृत में ये नहीं है, लेकिन ये प्रश्न को देखने से मालूम चलता है, वहां विभीषण भी अपनी निंदा करता है और हनुमान भी, ऐसे दोनों परस्पर की ऐसा उत्कर्ष करते हैं, बुराई करते हैं। ये भक्तों की विशेषता है। तो हनुमान जी परम प्रसन्न होकर के विभीषण की प्रशंसा करते हैं। वो हनुमान जी का विचित्र चरित्र है। वो नारद जी को कहते हैं हम कृपा के पात्र नहीं है। मान लो नारद जी पूछे क्यों नहीं है, ना जरा विचार कीजिए, यदि हम उनके कृपा के पात्र होते, जब प्रभु अपने समस्त अयोध्या वासियों को लेकर के साकेत चले गए, हमें क्यों नहीं गए? हमको तो लेना चाहिए था, हमने इतनी सेवा करी, हमें के बानर है, कपि चंचल है। अरे जो बच्चा, जो संतान चंचल प्रकृति की होती है, उनको पिताजी माताजी अपने पास रखते हैं, हमको क्यों नहीं दिया? भरत भी यही बात है, लक्ष्मण बड़ भागी, सदा प्रभु चरण पंकज अनुराग, हमें प्रभु ने नहीं पहचाना, लक्ष्मण को ले गए, लक्ष्मण बड़ भागी। तो यहां हनुमान जी कहते हैं हमको नहीं दिया, और मैं भी क्या सेवा करता हूं, मैं भी तो थोड़ी बहुत एक आध बार सेवा किया था, अब कितने समय बीत गए, एक बार तो लंका चले गए थे, हमेशा थोड़ी ना जा रहे हैं। सीता जी का पता तो एक बार ही लगाए थे दास भक्ति के आचार्य, परंतु पता नहीं वो पांडव को क्या जादू मालूम है। अरे हमारे यहाँ तो ठाकुर जी भी ठीक है, हम थोड़ी सेवा कर देते हैं, परंतु हमारे प्रमुख उनकी सेवा करते हैं। सेवा जो करते हैं वो नहीं, वो कहते हैं कि उनके नौकर चाकर तक बन जाते हैं। राजन पतिर गुरु अलम भवतम यदूनाम दैवम प्रिय कुलपति क्वच किंकर। किंकर शब्द का अर्थ किं करूंगी कि किंकर, किंकर उसको कहते हैं जो हाथ जोड़ करके कहता है क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, किं करूंगी। बोले पांडवों को क्या है, उनके पास बहुत कुछ है, वो पांडवों के धनी है, वो धन है, उन्हीं के वो नौकर चाकर बन जाते हैं, आप उन्हीं के पास चले जाओ, वो कृपा के पात्र है। नारद जी कहते हैं जुयम लोके बत घोरी भागा, जुयम लोके बत घोरी भागा, लोकम पुनाना मुनयो भिजंती, लोकम पुनाना मुनयो भिजंती, येषां गृहाणां वसति इति साक्षात्, येषां गृहाणां वसति इति साक्षात्, गूढं परब्रह्म मनोषलिंगं, गूढं परब्रह्म मनोषलिंगं। मनुष्य लिंग में मनुष्य अवतार धारण करके प्रभु उन्हीं के घर में छिप के बैठे हुए हैं, आप उनके पास जाओ, वो पांडव वास्तव में कृपा के पात्र है, हम नहीं है। हमको साथ नहीं दिया, हम थोड़ी बहुत सेवा कर देते हैं, पर वो पांडवों की सेवा करते हैं, तो कृपा के पात्र कौन है? हम है या पांडव? नारद जी ने कहा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अब तो हम पांडवों के लिए चलेंगे। ये प्रश्न हम करते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवा बुद्ध्यात्मना वा मनुष्यस्वभावा करोति यद्यत् सकलं प्रश्ने नारायणाय समर्पयेत्। यत्कृतं यत्करिष्यामि तद्गर्वं न मया कृतं, त्वया कृतं तत्फलभोक्तुमिव मधुसूदन। हरिओं तत्सत् हरिओं तत्सत् हरे कृष्ण। जय श्री राधे। समय थोड़ा सा 15 मिनट विलम्ब हो गया होगा, तो आप हमें क्षमा करना। हाँ जी,